आइए हम अपने सिरों को कुछ समय के लिए प्रार्थना में झुकाएं। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, वास्तव में यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम अपने परमेश्वर और उद्धारकर्ता के निकट जा सकें। इस अद्भुत गीत आप कितने महान हैं को सुनने के बाद यह हमें रोमांचित कर देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप कितने महान हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी महानता हमारे ऊपर नए रूप में इस दोपहर को प्रकट होगी जब हम बोलते हैं। और कई वर्षों में पहली बार मेरे भाग में यह बात आई है कि मैं जीवन के अतीत में वापस जाने का प्रयास करूं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे शक्ति देंगे और मुझे जिसकी आवश्यकता है प्रभु इस घड़ी में होने के लिए, और होने पाए कि मेरे जीवन की मेरी गलतियां केवल दूसरों के लिए एक सीख या सहारे का काम करे या उन्हें आपके और नजदीक लाए। प्रभु इसे प्रदान करें, होने पाए कि पापी समय के रेत पर पैरों के द्वारा बनाए गए पद चिन्हों को देखें, और होने पाए कि उनकी अगुवाई आपकी ओर करें। इन बातों को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं। मुझे ऐसा करने में खुशी होगी। ठीक है श्रीमान, धन्यवाद। जैसा कि यह संत मनुष्य भाई ग्लोवर, जिन्हें मैं अब कुछ वर्षों से जानता हूँ, कुछ समय कल शाम को उनके साथ समय बिताने का मुझे सौभाग्य मिला, और उन्होंने उसके विषय में मुझे बताया कि वे कुछ समय के लिए लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे, और अब 75 वर्ष की आयु में प्रभु की सेवा करने के लिए वापस आ रहे हैं। मैं अब उतना थका हुआ नहीं हूँ जितना ये सुनने से पहले था। मुझे लगा कि मैं थका हुआ हूँ, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता कि मैं हूँ। उन्होंने अभी अभी कुछ रुमाल यहाँ पर रखे हैं, उन लिफाफों के रूप में और ऐसी ही चीजों को जहाँ वे अंदर रखे हुए हैं और पहले से ही तैयार हैं। अब आप में से कोई भी जो रेडियो को सुन रहा है या यहाँ पर है और जिन्हें इन रुमालों की आवश्यकता है, और आप उन्हें चाहते हैं, एंजेलस टेम्पल उन्हें हर समय निरंतर बाहर भेजता है। आप यहाँ एंजेलस टेम्पल को लिख सकते हैं और वे उस पर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि यह वचन है, यह एक परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए उनमें से एक के ऊपर प्रार्थना करूँ, क्यों, मुझे ऐसा करने में खुशी होगी। आप बस मुझे पोस्ट ऑफिस बॉक्स में लिखें, 325 जेफरसन विले, जिसका उच्चारण है JEFFERSONVI 2 जेफरसन विले इंडियाना। और यदि आप पोस्ट ऑफिस बॉक्स को याद नहीं कर सकते हैं, आप बस जेफरसन विले लिखें। यह एक छोटा सा शहर है, इसकी जनसंख्या लगभग 35,000 है। यहाँ सभी जन मुझे जानते हैं, और इसलिए हमें रुमाल के लिए प्रार्थना करने और आपको भेजने में खुशी होगी। और अब इस बात को करने में हमें महान सफलता प्राप्त हुई है, क्योंकि आपको उसके साथ एक छोटा सा फॉर्म पत्र भी प्राप्त होगा कि संसार भर में लोग हर सुबह 9 बजे और 12 बजे और 3 बजे प्रार्थना करते हैं, और आप कल्पना कर सकते हैं संसार की दूसरी ओर इस प्रार्थना को करने के लिए रात में उनको कितने बजे उठना पड़ता होगा। इसलिए यदि ये सब दसियों हजार और हजारों गुना लोग परमेश्वर को ठीक एक समय पर सेवकाई के लिए प्रार्थनाएं भेजते हैं, आपकी बीमारी के लिए की गई प्रार्थना को परमेश्वर बस ठुकरा नहीं सकता है। और सो अब हम, जबकि मैं इस बात को कह रहा हूँ, हमारे पास कोई योजनाएं नहीं है, हमें एक भी पैसे की आवश्यकता नहीं है। हम बस, यदि हम बस आपकी सहायता कर सकते हैं, उसी बात के लिए हम यहाँ पर हैं। और आइए, हम कोई रुमालों के एक और गुच्छे को लेकर आ रहा है। अब यदि आपके पास में कोई रुमाल नहीं है जिसको कि आप भेजना चाहते हैं, अच्छा, तब आप जो भी हो हमें लिखें। यदि आपको अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, उसे बाइबल में प्रेरितों के काम उसके 19वें अध्याय में रख दें, और यह एक छोटे से सफेद रिबन के रूप में होगा जिसको कि आपके पास भेजा जाएगा, और उसके साथ निर्देश दिए जाएंगे कि पहले कैसे अपने पापों का अंगीकार करना है, और धन्यवाद, अपने पापों का अंगीकार कैसे करना है। परमेश्वर के साथ पहले अपने आप को ठीक किए बिना आपको कभी परमेश्वर से कुछ भी चीज पाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। समझे, और उसके बाद पड़ोसियों को और अपने पास्टर को इसमें बुलाने के लिए आपको निर्देश दिए जाते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के विरोध में आपके हृदय में कुछ बात है, आप जाकर पहले उसे ठीक कर लें और वापस आएं और फिर प्रार्थना करें। अपने घर में एक प्रार्थना सभा करें और इस रुमाल को अपने अंदर पहनने वाले कपड़े के साथ पिन से लगा दें, फिर परमेश्वर पर विश्वास करें। और हर दिन उन्हीं 3 घंटों में दुनिया भर में लोग प्रार्थना करेंगे, पूरी दुनिया भर में एक श्रृंखला बन जाएगी। और अब यह आपके लिए बिल्कुल मुफ्त में है, बस इसे भेज दें। और अब हम आपको बार बार लिखकर न तो परेशान करेंगे या न ही अपने किसी कार्यक्रम की सूचना देने के लिए बताएंगे। हम चाहते हैं कि आप कार्यक्रम के लिए समर्थन करें, लेकिन हमारे पास कोई कार्यक्रम नहीं है कि आप समर्थन करें, समझे। इसलिए आप यह आपका पता प्राप्त करने के लिए नहीं है, यह केवल सुविधा के लिए और प्रभु की सेवकाई के काम के लिए है जिसे हम जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, और यदि आप रेडियो को सुन रहे हैं और आपका रुमाल वहाँ पर रखा हुआ है, आप बस अपने हाथ को उस पर रखें जब हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपके पास इन छोटे छोटे पार्सल को लाते हैं, शायद इनमें से कुछ एक बच्चे के पहनने के लिए छोटी छोटी बनियान है, या शर्ट के नीचे पहनने के लिए कुछ छोटे कपड़े हैं, या शायद छोटे जुराबों के जोड़े हैं, या कुछ चीज है, रुमाल है, जो कि बीमार और पीड़ितों के लिए भेजा जाना है। प्रभु, ये आपके वचन के अनुसार है जो हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम पीड़ितों की किताब में पढ़ते हैं कि उन्होंने आपके दास पौलुस के शरीर से रुमाल और कपड़े लिए, क्योंकि वे ये विश्वास करते थे कि आपकी आत्मा उस मनुष्य के ऊपर है, और अशुद्ध आत्माएं लोगों में से बाहर निकल गई और परेशानियों और बीमारियों ने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि वे विश्वास करते थे। और अब प्रभु, हमें इस बात का एहसास है कि हम संत पौलुस नहीं हैं, लेकिन हम यह जानते हैं कि आप अभी भी वही यीशु हैं, और हम यह प्रार्थना करते हैं कि आप इन लोगों के विश्वास का आदर करेंगे। और यह पहले एक बार कहा गया था कि जब एक बार इज़राइल परमेश्वर की आज्ञा मानने की कोशिश करते हुए एक जाल में फंस गया था, उनके सामने एक समुन्दर था, दोनों ओर पहाड़ थे, और फिर उनकी सेना निकट आ रही थी, और एक व्यक्ति ने कहा कि परमेश्वर ने उस आग के खंभे में से होते हुए क्रोधित आंखों से देखा, और समुन्दर भयभीत हो गया और अपने आप को पीछे हटा लिया, और इसराइल के लिए प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाने के लिए मार्ग को बना दिया। ओ प्रभु, आप फिर से नीचे की ओर देखें जब ये पार्सल बीमार शरीरों पर आपके जीवित वचन की याद में रखे जाएंगे, और होने पाए कि बीमारी भयभीत हो जाए। आप अपने पुत्र यीशु के लहू में से होकर देखें, जो कि इस प्रायश्चित के लिए मर गया, और होने पाए कि शत्रु भयभीत हो जाए और दूर चला जाए, जिससे कि यह लोग प्रतिज्ञा की ओर प्रवेश करने पाए। कि सब बातों से बढ़कर आपकी यह इच्छा है कि हम स्वास्थ्य में समृद्ध हों। पिता, आप इसे प्रदान करें, क्योंकि हम इसे अपने हृदय के अंदर उस दृष्टिकोण के साथ भेजते हैं, और यही हमारा उद्देश्य है। हम इसे यीशु मसीह के नाम में भेजते हैं, आमीन। धन्यवाद भाई ग्लोवर, आपका धन्यवाद श्रीमान। अब आज रात बेदारी के इस भाग की समाप्ति है। मैं यह नहीं जानता हूँ कि इसको प्रसारित किया जाएगा कि नहीं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ, यदि नहीं, रेडियो के श्रोतागण के लिए बहुत बहुत सारे वर्षों में यह मेरी सबसे अच्छी सभाओं में से एक सभा रही है। यह सभा ठोस, बहुत ही अच्छी, प्रेम से भरी, सहयोगशील सभा रही है, जिसमें मैं काफी समय के बाद आया हूँ। They're listening to you all over Southern California, out into the islands and on the ships. We get messages from them, and so you got a big audience, thousands and tens of thousands. श्रीमान, आपका धन्यवाद, यह बहुत ही अच्छी बात है, इसे सुनकर खुशी हुई। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और निश्चित रूप से मेरे हृदय में हमेशा से एंजेलिस टेम्पल के लिए एक गर्म जोशी भरा स्थान रहा है, यीशु मसीह के पूर्ण सुसमाचार पर खड़े होने के लिए। और अब ये मेरे लिए और भी व्यक्तिगत प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सब लोगों से मिलने के बाद और उनकी अच्छी आत्मा को देखते हुए मुझे लगता है कि जैसे कि मैं पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आप लोगों में से एक हो गया हूँ।
God bless you is my prayer.
परमेश्वर आपको आशीष दे, यह मेरी प्रार्थना है और आपका बहुत धन्यवाद। अब ये बताया गया था कि आज मुझे आपसे एक प्रकार से थोड़ी देर के लिए मेरी जीवन कथा पर बोलना है। यह मेरे लिए एक कठिन बात है। बहुत वर्षों में यह पहली बार है कि मैंने इस पर विचार करने की कोशिश की है और मेरे पास विस्तार से बताने का समय नहीं होगा, लेकिन मैं केवल इसका कुछ हिस्सा ही बता पाऊंगा। और यहाँ पर मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं, बहुत सी ऐसी चीजें की हैं जो गलत थी, और मैं ये चाहूँगा कि आप जो रेडियो के द्वारा इसे सुन रहे हैं और आप जो यहाँ उपस्थित हैं, कि आप मेरी गलतियों को ठोकर के पत्थर के रूप में नहीं लेंगे, लेकिन आप उन्हें कदम रखने के पत्थर बनाए जो आपको प्रभु यीशु के नजदीक ले जाए। तब आज रात प्रार्थना कार्ड को चंगाई की सभा के लिए दिया जाना है। अब जब हम चंगाई की सभा के विषय में बोलते हैं, इसका यह अर्थ नहीं है कि हम किसी को चंगा करने जा रहे हैं। हम तो किसी के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। परमेश्वर ही चंगा करने वाला है। वो मेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए मेरे साथ बस बहुत अनुग्रहकारी रहा है। और एक प्रसिद्ध प्रचारक के प्रबंधक से यहाँ कुछ समय पहले मैं बात कर रहा था और ये पूछा गया था कि उस सुसमाचार के प्रचारक ने बीमारों के लिए प्रार्थना क्यों नहीं की, और उस सुसमाचार के प्रचारक ने मेरी सभाओं के प्रबंधक से वापस कहा, यदि यह सुसमाचार का प्रचारक दिव्य चंगाई में विश्वास करता है और यदि वह बीमारों के लिए प्रार्थना करना आरंभ कर देगा, तो यह चीज उसकी सभा में बाधा डालेगी, क्योंकि उसे कलीसियाओं के द्वारा प्रायोजित किया गया है। बहुत सारी कलीसियाएं और उनमें से बहुत से लोग दिव्य चंगाई में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए मैं उस सुसमाचार के प्रचारक का आदर करता हूँ और उसकी इज्जत करता हूँ, क्योंकि वह अपने स्थान पर खड़ा है और अपने कर्तव्य को निभा रहा है। वो शायद मैं उसका स्थान कभी नहीं ले सकता हूँ, और मुझे संदेह है कि क्या वो मेरा स्थान ले सकता है। हम सभी का परमेश्वर के राज्य में एक स्थान है। हम सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। भिन्न भिन्न दान हैं, लेकिन आत्मा वही है। भिन्न भिन्न प्रकटीकरण है, मेरा मतलब है, लेकिन आत्मा वही है। और अब आज रात सभाएं आरंभ होगी। मैं सोचता हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि संगीत का कार्यक्रम 6:30 बजे आरंभ होगा, और अब यदि आप रेडियो पर हैं, आप आकर इसे सुने, यह सुंदर होगा। यह हमेशा से ही सुंदर रहा है। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना कार्ड इस सभा के ठीक तुरंत बाद ही दिए जाएंगे, बस जैसे ही यह सभा समाप्त की जाती है। यदि आप यहाँ हैं और एक प्रार्थना कार्ड को चाहते हैं, तो मुझे वहाँ अंदर कुछ समय पहले बेटे के द्वारा या श्रीमान मर्सियर या श्रीमान गोवार्ड के द्वारा निर्देश दिए गए थे, वे प्रार्थना कार्ड को देंगे। बस अपनी सीटों पर बैठे रहें, जैसे ही सभा को समाप्त किया जाता है, बस अपनी सीट पर बने रहें, ताकि लड़के उस पंक्ति में से होकर वहाँ जाएं और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी प्रार्थना कार्ड को दे दें। ऐसा बालकनी में या इस मंजिल पर, हर कहीं निचले मंजिल पर या जहाँ कहीं भी आप हैं, इसे दिया जाएगा। बस आप अपनी सीट पर रुके रहें, जिससे कि लड़के जान जाएं कि आप प्रार्थना कार्ड को लेने के लिए यहाँ पर हैं। और फिर आज रात हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, और यदि प्रभु मेरे विचारों को नहीं बदलता है, मैं आज रात एक विषय पर प्रचार करना चाहता हूँ, यदि तू हमें पिता को दिखाए तो इससे हम संतुष्ट हो जाएंगे। अब इस दोपहर मैं विषय के लिए इसे पढ़ना चाहता हूँ, बस जीवन कथा को आरंभ करने के लिए, जो इब्रानियों की किताब और उसके 13वें अध्याय में पाया जाता है। और आइए हम यहाँ पर आरंभ करें, लगभग मैं कहूँगा कि 12वें पद से आरंभ करें। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। सो आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। अब यह एक तरह से एक विषय है, क्योंकि आप देखते हैं, यदि यह एक जीवन कथा है या कुछ ऐसा है जो मनुष्य से संबंधित रखता है, हम उसे महिमा नहीं देते हैं। और विशेष रूप से एक व्यक्ति का बीता हुआ समय, यदि वो इतना अधिक अंधकार में रहा हो जितना कि मेरा रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि यदि हम वचन को पढ़ें तो परमेश्वर उस वचन को आशीष देगा। और मेरा यह विचार है कि यहाँ पर हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। अब मैं ये जानता हूँ कि आपको लॉस एंजलिस बहुत पसंद है, आपको ऐसा लगने का अधिकार है। यह एक बड़ा और सुंदर शहर है, धुंध और अन्य कई चीजों के बावजूद यह एक खूबसूरत शहर है। यहाँ का मौसम भी अच्छा है, लेकिन यह शहर हमेशा बना नहीं रह सकता है, इसका अंत तो होना ही है। मैं रोम में खड़ा हुआ था जहाँ पर बड़े बड़े सम्राट थे और शहर थे। उन्होंने जो सोचा कि वे उन शहरों को अमरहार बना देंगे, और अब यहाँ तक उस शहर के अवशेषों को ढूंढने के लिए जमीन को 20 फुट खोदना पड़ता है। मैं उस स्थान पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर फिरौन ने अपना बड़ा राज्य स्थापित किया था, और यह पता लगाने के लिए कि बड़े फिरौन ने कहाँ पर राज्य किया था, आपको नीचे जमीन में खुदाई करनी पड़ती है। हम सभी अपने शहरों और अपने स्थानों के विषय में सोचना पसंद करते हैं, लेकिन याद रखिए, यह स्थायी नहीं रह सकता है। जब मैं एक छोटा लड़का था, मैं एक बड़े चिनार के पेड़ की ओर जाया करता था। हमारे देश में बहुत सारी सख्त लकड़ियाँ हुआ करती थी, और तब हमारे पास यह चिनार का पेड़ था, अर्थात चीनी का चिनार, और जिसको कि हम सख्त चिनार और नरम चिनार कहते हैं। यह पेड़ जो एक विशाल पेड़ था, यह बहुत सुंदर पेड़ था। और जब मैं खेतों में से भूसी में काम करने के बाद और कटाई के बाद आकर, और मुझे इस बड़े पेड़ के पास जाना अच्छा लगता था, और इसके चारों ओर बैठकर और ऊपर की ओर देखना पसंद था, और मैं इसकी बड़ी और शक्तिशाली डालियों को हवा में झूलते हुए देख सकता था। उसका तना बहुत बड़ा था, और मैंने कहा, आप जानते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि यह पेड़ यहाँ पर सैकड़ों और सैकड़ों वर्षों तक रहेगा। ज्यादा समय नहीं हुआ जब मैंने उस पुराने पेड़ को देखा, वह बस एक ठूंठ या टुकड़ा था, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं है। नहीं, कोई भी चीज जिसे आप पृथ्वी पर देखते हैं बनी नहीं रहेगी, इसका अंत तो होना ही है। हर एक चीज जो मरणहार है, अमरता के लिए रास्ते को देना ही पड़ेगा। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम हमारे महामार्गों को कितना अच्छा बनाते हैं, हम अपने भवनों को कितना अच्छा बनाते हैं, ये सब तो खत्म होना ही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो कि बनी रहे, बस अनदेखी चीजें ही हैं जो कि बनी रहती हैं। मुझे याद है वो घर जिसमें हम रहा करते थे, वह लकड़ी के लट्ठे का बना हुआ घर था जिसकी दरारों में मिट्टी लगी हुई होती थी। मैं शायद, हो सकता है बहुत से लोगों ने दरारों में मिट्टी लगे हुए घर को कभी नहीं देखा है, लेकिन उसकी दरारों में हर कहीं मिट्टी लगी हुई थी, और उस पुराने से घर में बहुत बड़े बड़े लट्ठे थे। मैं सोचता था कि वह घर 100 से भी अधिक वर्षों तक खड़ा रहेगा, लेकिन आप जानते हैं कि जहाँ पर वो घर बना हुआ था, आज ये एक आवासीय योजना है। यह बहुत ही अधिक भिन्न है, सब कुछ बदल रहा है। लेकिन और मैं अपने पिता को देखा करता था, वो एक छोटे कद के और गठीले व्यक्ति, बहुत मजबूत थे, और वो सबसे मजबूत छोटे लोगों में से एक थे जिसे मैं जानता था। मेरी मुलाकात श्रीमान कूट से हुई, जिनके साथ वे लट्ठों का काम किया करते थे। वह लट्ठों को काटने का काम करते थे, और लगभग एक वर्ष पहले, और श्रीमान कूट्स, जो मेरे बहुत अच्छे एक मित्र हैं और फर्स्ट बैप्टिस्ट कलीसिया के डीकन थे, और उन्होंने कहा, बिल्ली, तुम्हें एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। और मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं हूँ श्रीमान कूट्स। उन्होंने कहा, यदि तुम अपने पिता के अनुसार चलो तो तुम वैसे बन जाओगे। कहा, मैंने उस व्यक्ति को देखा है जो 140 पाउंड वजन उठाता है। वो गाड़ी में स्वयं एक लट्ठे को चढ़ाते थे जिसका वजन 900 पाउंड होता था। वह बस जानते थे कि इसे कैसे करना है। वो मजबूत थे। मैं उन्हें देखा करता था जब वो इस स्थान पर नहाने के लिए आते और रात के भोजन के लिए तैयार होते, जब माँ उन्हें बुलाया करती थी। और सामने के आंगन में हमारे पास एक पुराना सेब का पेड़ था, और फिर पीछे की ओर साथ ही तीन या चार छोटे छोटे पेड़ थे, और बीच वाले पेड़ के मध्य में एक पुराना सा देखने वाला आईना था। वो एक बड़े टूटे हुए आईने का टुकड़ा था, और मुड़ी हुई कीलों की सहायता से वो आईना पेड़ के एक तरफ टंगा हुआ था। एक प्रकार से आप में से कुछ बड़े यदि इसे सुन रहे हैं तो आप इसे कोट टांगने की चीज कहते हैं। उस आईने को इसके स्थान पर अटकाने के लिए कील को अंदर मोड़ दिया गया था, और वहाँ एक पुरानी सी टीन की कंघी थी। आप में से कितनों ने पुरानी टीन, पुराने समय की टीन की कंघी देखी है? मैं बस इसे देख सकता हूँ। और फिर वहाँ एक छोटा सा धुलाई का तख्ता था, बस एक छोटा सा तख्ता जिसके नीचे छोटा सा तिरछा पाया था जो पेड़ के सहारे लगा हुआ था। एक छोटा सा पुराना आधा गंडक का पंप था जिससे कि हम पानी निकाला करते थे और हम इस पुराने पेड़ पर नहाया करते थे। और माँ हमेशा अनाज की बोरियों को लेकर और तौलिया बनाया करती थी। क्या कभी किसी ने खाने की बोरियों के बने हुए तौलिये इस्तेमाल किए हैं? अच्छा, मुझे यकीन है कि मुझे घर जैसा अनुभव हो रहा है। और वे बहुत बड़े और पुराने तौलिये थे, बहुत ही खुरदरे। और जब वो हम छोटे बच्चों को नहलाया करती थी, हर एक बार जब वो रगड़ा करती थी, ऐसा महसूस होता था कि वो हमारी खाल को रगड़ कर उतार रही हो। और मुझे वो पुरानी अनाज की बोरी याद है। और एक प्रकार से उसे सजाने के लिए वह उसमें से कुछ धागों को निकाल के बाहर लटका देती थी। आप में से कितने सूखे घास के बिस्तर पर कभी सोए हैं? अच्छा, मैं ये कहूँगा, आप में से कितने ये जानते हैं कि भूसी के बने हुए तकिए क्या होते थे? तो भाई ग्लोवर, मैं अब घर पर हूँ। निश्चित रूप से सूखे घास का बना हुआ बिस्तर। अच्छा, ज्यादा समय नहीं हुआ जब मैं एक इसी प्रकार की चीज पर से होकर आया हूँ। और ऐसा था, ओह, ये बहुत अच्छी नींद थी, वहाँ पर ठंडी थी। फिर सर्दी में वे उस पुराने पंखों के बिस्तर को लेते थे और उस पर लेट जाते थे, आप जानते हैं। और फिर हमारे ऊपर कैनवास या टाट के छोटे टुकड़े को रख दिया करते थे क्योंकि बर्फ बहकर घर की उन दरारों में से होकर अंदर आती थी। आप जानते हैं, जहाँ पर वे पुराने छत पर लगे हुए तख्ते ऊपर उठ जाते थे, आप जानते हैं, और बर्फ उसमें से होकर आती थी। और ओह, मैं उस बात को बहुत अच्छी तरह से याद कर सकता हूँ। और फिर पापा के पास दाढ़ी बनाने वाला ब्रश हुआ करता था। मैं अब इस बात से आप समझ जाएंगे, ये मक्के के छिलकों का बना हुआ था, मक्के के छिलकों का बना हुआ दाढ़ी बनाने वाला ब्रश। वे माँ के बनाए हुए खारे घोल के साबुन को लेकर उससे तैयार करते थे और मक्के के छिलके के बने हुए दाढ़ी के ब्रश से अपने चेहरे पर इसे लगाया करते थे और एक बड़े से और पुराने सीधे रेजर से दाढ़ी बनाते थे। और रविवार को वो उन कागज के टुकड़ों को लेकर अपने कॉलर पर चिपका लिया करते। वे पारदर्शी प्लास्टिक के बने हुए कॉलर को पहनकर और अपने कॉलर के चारों ओर इस प्रकार से लगाया करते थे जिससे कि झाग उस शर्ट के कॉलर पर न लगे। क्या आपने कभी ऐसा करते हुए देखा है? क्यों? ओह ओह, मुझे वो छोटा सा झरना जो वहाँ नीचे की ओर था याद है, जहाँ पर जाकर हम पानी पिया करते थे और पुराने सूखी लौकी के बने डोंगे या कटोरे से पानी को बाहर निकाला करते थे। आप में से कितनों ने सूखी लौकी के बने डोंगे को देखा है? अच्छा, आप में से कितने लोग केंटकी से हैं? जो भी हो, हाँ तो ठीक है, अब यहाँ पर केंटकी के रहने वालों की ओर देखें। अच्छा मेरे प्रभु, मैं ठीक, मैंने सोचा कि यहाँ पर सारे ओकलाहोमा के रहने वाले और आर्कनसास के रहने वाले ही होंगे, लेकिन ऐसा दिखाई देता है जैसे केंटकी अंदर आ रहा है। तो कुछ महीनों पहले उन्होंने केंटकी में तेल की खोज की थी, आप जानते हैं, तो हो सकता है कि उनमें से कुछ इस ओर आ रहे हैं। और फिर मुझे याद है जब पिताजी आकर और रात के खाने के लिए अपना हाथ धोते थे, वो अपनी आस्तीनों को ऊपर की ओर मोड़ लिया करते थे और उनके हाथ छोटे से और गोल गोल थे। और जब वह अपने हाथों को धोने के लिए ऊपर लाते थे, पानी को अपने चेहरे पर मारते थे, उनके छोटे से हाथों में मांसपेशियां बस ऐसे ऊपर आने लगती थी। और मैंने कहा, आप जानते हैं, मेरे पिताजी 150 वर्ष जिएंगे। वो बहुत ही मजबूत थे, लेकिन उनकी मृत्यु 52 वर्ष में हो गई। देखा, यहाँ पर हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं है। यह सही बात है, हम स्थिर नहीं रह सकते हैं। अब आइए हम सभी एक छोटी सी यात्रा करें। यहाँ पर आप में से हर एक जन के पास एक जीवन कथा है, ठीक जैसे कि मेरे पास है। और कभी कभी पुरानी यादों की गली में जाना भी अच्छा होता है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? बस पीछे जाएं और आइए हम सभी कुछ समय के लिए पीछे चलें, वापस उन्हीं प्रकार के अनुभव में चलें जब हम छोटे बच्चे थे। और अब यह जीवन कथा का पहला भाग है। मैं बस उस बात पर थोड़ा सा बोलूंगा क्योंकि यह पुस्तक में है और आप में से बहुत लोगों के पास पुस्तक है। मेरा जन्म एक छोटे से पहाड़ के कमरे में हुआ था। वहाँ दूर केंटकी के पहाड़ों में उनके पास एक कमरा था जहाँ पर हम रहते थे। फर्श पर कोई गालीचा नहीं था, यहाँ तक कि फर्श पर लकड़ी तक नहीं थी। वह बस साधारण रूप से नग्न फर्श था और एक पेड़ की ठूंठ थी। एक पेड़ की ठूंठ का ऊपरी हिस्सा काटा गया था जिसमें तीन पाए लगे हुए थे। यही हमारी मेज थी और वे सारे छोटे ब्रैनम उसके चारों ओर एकत्र होते थे और बाहर उस छोटी सी कोठरी के सामने मिट्टी में लोटपोट होकर खेलते थे। दिखने में ऐसा लगता था जैसे ढेर सारे ओपासम वहाँ मिट्टी में लोटपोट होकर खेल रहे हों। आप समझते होंगे, हम सारे छोटे भाई लोग, हम 9 जन थे और एक छोटी लड़की थी और उन लड़कों के बीच उसका बहुत कठिनाई से समय गुजर रहा था। हम आज भी उन बातों में उसका आदर करते हैं जो हमने उन दिनों में किया था। वो हमारे साथ कहीं भी नहीं जा सकती थी, हम उसे वापस भगा दिया करते थे। वो एक लड़की थी तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप जानते हैं। तो हमारे पास और सब याद रखिए कि मेज के पीछे हमारे पास बस 2 कुर्सियां थी और वे पेड़ की छाल की बनी हुई थी। बस पुराने अखरोट के छोटे पौधों को साथ जोड़ा जाता था और उनके निचले हिस्से को अखरोट के पेड़ के छालों से बांध दिया जाता था। क्या कभी किसी ने अखरोट के पेड़ की छाल की बनी कुर्सी देखी है? जी हाँ, और मैं अभी भी माँ को सुन सकता हूँ। ओह, बाद में हम एक ऐसे स्थान पर आए जब उनके पास लकड़ी का बना हुआ फर्श था। बच्चे इस प्रकार से उसकी गोद में रहते थे और बस उस पुरानी कुर्सी से बस फर्श पर जोर जोर से हिलाकर आवाज करती थी। और मुझे याद है कि मैं उन छोटे बच्चों को दरवाजे के बाहर जाने से रोकता था जब वो कपड़े धो रही होती थी या कुछ और काम कर रही होती थी। वह अपनी कुर्सी को रख देती और दरवाजे पर उसे एक प्रकार से तिरछी लगा देती थी ताकि छोटे बच्चे बाहर न जाने पाए जब वो झरने से पानी भरने और ऐसे ही कामों के लिए जाना पड़ता था। और जब मेरा जन्म हुआ तो माँ 15 वर्ष की थी, पिताजी 18 वर्ष के थे और 9 बच्चों में मैं पहला था। और उन्होंने मुझे बताया कि जिस सुबह मेरा जन्म हुआ था, अब हम बहुत ही निर्धन थे, बस निर्धनों में सबसे निर्धन थे और यहाँ तक कि हमारे पास एक छोटी सी कोठरी में खिड़की तक नहीं थी। उसमें एक प्रकार का एक छोटा सा लकड़ी का द्वार था जिसे आप खोल सकते हैं। मुझे संदेह है कि आपने शायद ही उस प्रकार की कोई चीज देखी होगी, एक छोटा सा लकड़ी का द्वार जो कि खिड़की के स्थान पर खुलता था। आप उसे दिन में खोल सकते हैं और रात में उसे बंद कर देते हैं। उन दिनों में हम बिजली की लाइटों को या यहाँ तक कि मिट्टी के तेल को जला नहीं सकते थे। हमारे पास वो था जिसे आप एक तेल युक्त दीपक कहते थे। अब मैं नहीं जानता हूँ कि क्या आप यह भी जानते हैं कि तेल युक्त दीपक क्या होता है। अच्छा, आप क्या और क्या आपने कभी खरीदा है? क्या आपने कभी देवदारू की गांठ को जलाया है? क्योंकि आप बस एक देवदारू की गांठ लें और इसे जलाएं और उसे एक ढक्कन पर रख दें, वो जलेगी और वो उससे थोड़ा सा धुआं उठता था। लेकिन किसी भी तरह से उनके पास कोई भी मेज कुर्सी नहीं थी जिस पर धुआं प्रभाव डालता, इसलिए वो बस उस कोठरी में धुआं भर जाता था। ये अच्छी तरह खींच लेता था क्योंकि ऊपर छत में धुआं निकलने के लिए काफी जगह थी, इसलिए ये। और मेरा जन्म 6 अप्रैल 1909 को हुआ था। अवश्य ही आप ये जानते हैं जो अब मुझे 25 वर्ष से थोड़ा सा और अधिक उम्र का बनाता है। और सो जिस सुबह मेरा जन्म हुआ, माँ ने कहा कि उन्होंने खिड़की को खोला था। अब हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं थे, वहाँ एक दाई थी बस, और वो दाई मेरी नानी थी। और सो जब मेरा जन्म हुआ और मैंने पहली बार रोना आरंभ किया और माँ अपने बच्चे को देखना चाहती थी और वो स्वयं ही एक बच्ची से और अधिक नहीं थी। और जब उन्होंने उस छोटी सी खिड़की को बस दिन निकलने पर लगभग 5 बजे खोला और एक छोटी सी रॉबिन चिड़िया एक छोटी सी झाड़ी के किनारे बैठी थी और मेरी जीवन कथा की पुस्तक में आप सभी ने उसकी तस्वीर देखी है। एक छोटी रॉबिन चिड़िया वहाँ पर बैठी हुई थी और वो अपने पूरे जोश से गा रही थी। मैंने हमेशा से रॉबिन चिड़ियों से प्रेम किया है। अब आप लड़कों जो रेडियो के द्वारा से सुन रहे हो, आप मेरी चिड़ियों पर गोली मत चलाना, आप समझे, वे हैं, वे मेरी चिड़िया है। क्या आपने कभी रॉबिन चिड़िया की कहानी सुनी है कि कैसे उसका सीना लाल हो गया? मैं कुछ समय के लिए यहाँ पर रुकूंगा। उसका सीना लाल कैसे हुआ? एक बार राजाओं के राजा की मृत्यु क्रूस पर हो रही थी और वो कष्ट से होकर जा रहा था और कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था, कोई भी उसकी सहायता करने के लिए नहीं था। और वहाँ पर एक छोटी भूरे रंग की चिड़िया क्रूस पर से उन कीलों को निकालना चाहती थी और वह क्रूस की ओर उड़ती रही और उन कीलों को झटका देती। वो उनको निकालने के लिए बहुत ही छोटी थी और उसका छोटा सीना खून से पूरा लाल हो गया और तभी से लेकर उसका सीना लाल रहा है। लड़कों, उसको गोली नहीं मारना, उसे ऐसे ही जाने दो। वो खिड़की के किनारे बैठी हुई थी, जैसे रॉबिन चिड़िया गाती है, वो चीची कर रही थी, और पिताजी ने खिड़की को पीछे की ओर धकेला, और जब उन्होंने छोटी सी खिड़की के द्वार को पीछे धकेला, वो प्रकाश जो आप उस तस्वीर में देखते हैं, गोल घूमता हुआ खिड़की के अंदर आया। मेरी माँ ऐसा कहती है, और बिस्तर के ऊपर आकर ठहर गया। दादी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अब हमारा परिवार एक धार्मिक परिवार नहीं था। मेरे लोग कैथोलिक थे, मैं दोनों ओर से आयरिश हूँ। मेरे पिता पूरी तरह से आयरिश हैं, ब्रैनम। मेरी माँ हार्वे की रहने वाली है, केवल उनके पिता ने दक्षिणी अमेरिकी इंडियन से विवाह किया है। इस प्रकार से आयरिश लहू की वह छोटी सी वंश रेखा वहीं टूट गई, और पिता और माँ कलीसिया नहीं जाते थे, और उनका विवाह कलीसिया में नहीं हुआ था, और उनके पास बिल्कुल कोई भी धर्म नहीं था, और यहाँ तक वहाँ पीछे पहाड़ों में कोई कैथोलिक कलीसिया तक नहीं थी। तो वे वहाँ पर आरंभ में बसने वालों के साथ आए, दो ब्रैनम वहाँ पर आए, और उन्हीं से ब्रैनम लोगों की सारी पीढ़ी उत्पन्न हुई। यह ब्रैनम परिवार की वंशावली है। और फिर उन्होंने खोला, जब उन्होंने खिड़की को खोला और ये प्रकाश वहाँ पर अंदर ठहर गया, वे यह नहीं समझ पाए कि क्या करना है। पिता ने अपने लिए इस अवसर के लिए एक जोड़ी कपड़े खरीदे थे, माँ ने बताया। वो खड़े हुए थे पुराने कपड़ों की जेब में हाथ डाले हुए, जैसे कि जंगल में काम करने वाले और लट्ठे ढोने वाले उन दिनों में करते थे, और इस बात ने उन्हें भयभीत कर दिया। खैर, जब मैं शायद 10 दिन का हो गया था या ऐसा ही कुछ, वे मुझे एक छोटी बैप्टिस्ट कलीसिया में ले गए, जिसे ऑपोसम किंगडम कहा जाता है। ऑपोसम किंगडम बैप्टिस्ट कलीसिया, यह क्या ही नाम है। वहाँ एक बूढ़ा था जो जगह जगह जाकर प्रचार करता था। पुराने समय के बैप्टिस्ट प्रचारक लगभग हर दो महीने में एक बार वहाँ आते थे। लोग वहाँ एक साथ सभा को करते थे, वे जाते थे, कुछ गीतों को गाते थे, लेकिन वो प्रचारक वहाँ पर अक्सर जगह जगह घूमकर प्रचार किया करता था। वे उसे हर वर्ष कद्दूओं का एक बोरा और ऐसे ही कुछ चीजों को देते थे। आप जानते हैं कि लोग उसे देने के लिए कुछ जुटाते थे, और एक बूढ़ा प्रचारक वहाँ पर आया, और वहाँ उसने मेरे लिए प्रार्थना की जब मैं एक छोटा लड़का था। यही मेरा पहली बार कलीसिया में जाना हुआ था, लगभग वर्ष का, जब मैं कुछ तो छोटा था, वहाँ दो वर्ष का ही था, पहले दर्शन ने जगह ली। अच्छा, उन्होंने हर कहीं पहाड़ियों में इस बात को बता दिया था कि वह प्रकाश वहाँ पर आया था, इसलिए उन्होंने उस बात का पता लगाने की कोशिश की। उनमें से कुछ ने कहा कि हो सकता है कि वह सूर्य का प्रकाश रहा होगा, जो कि घर के आईने से टकरा कर वापस आया होगा, लेकिन घर में कोई आईना नहीं था और सूरज नहीं निकला था, इसलिए ये बहुत ही सवेरे का समय था, 5 बज रहे थे। और फिर ओह, उन्होंने उस बात को भुला दिया, और जब मैं लगभग मान लेते हैं कि 3 वर्ष के करीब रहा होऊंगा, अब मुझे ईमानदार बने रहना है। यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, और मेरी यह इच्छा है कि मैं इसे छोड़ दूँ और मुझे इसे नहीं कहना पड़े, लेकिन फिर भी सच्चाई बताने के लिए, यदि यह आपके बारे में है या आपके लोगों के बारे में, आपको अवश्य ही सच्चाई को बोलना है। इसके बारे में ईमानदार रहूं, और फिर यह हमेशा एक जैसा ही रहेगा। मेरे पिता एक धार्मिक व्यक्ति होने से कोसों दूर थे। वो विशिष्ट एक पहाड़ी लड़के थे, जो कि निरंतर हर समय शराब पीते थे, और वो एक लड़ाई में मुसीबत में पड़ गए थे, और 2 या 3 व्यक्ति लगभग मर गए होते जब वे लड़ रहे थे, गोली चला रहे थे और एक दूसरे को चाकुओं से काट रहे थे। वे पहाड़ों में किसी प्रकार की पार्टी में थे, और पिता इस लड़ाई में सरगनाओं में से एक थे, क्योंकि उनका एक मित्र घायल हो गया था और उसने किसी को कुर्सी से मारा था, और उस व्यक्ति ने चाकू निकाल दिया था और पिता के मित्र को काटने जा रहा था, उस चाकू से फर्श पर उसके हृदय के आर पार, और पिता ने उसको साथ दिया था, और यह अवश्य ही वास्तव में बहुत ही भयंकर लड़ाई रही होगी, क्योंकि उन्होंने बरकस विले से बहुत मील दूर से पिता के पीछे पीछे एक पुलिस वाले को घोड़े पर भेजा था। सो वह व्यक्ति मृत्यु के कगार पर खड़ा हुआ था। हो सकता है कि उसके कुछ लोग सुन रहे हों। मैं उसका नाम बताने जा रहा हूँ। उसका नाम था विल यार्बो। उन्होंने शायद, मैं सोचता हूँ, उसके कुछ लड़के कैलिफोर्निया में हैं। लेकिन वो एक झगड़ालू मनुष्य था। वो एक बड़ा शक्तिशाली पुरुष था। उसने अपने ही लड़के की बाड़े की छर से हत्या कर दी। सो वह बहुत ही शक्तिशाली और एक दुष्ट व्यक्ति था, और इसलिए उसके और पिता के बीच में चाकू से लड़ाई हुई, और मेरे पिता ने उस व्यक्ति को लगभग मार ही दिया था। इसलिए उन्हें भागना पड़ा था और केंटकी को छोड़ना पड़ा और इंडियाना नदी के पार जाना पड़ा। और उनका एक भाई था जो उस समय लुइसविले केंटकी में रहता था। वो वुड मोजेस सॉ मिल्स में सहायक अधीक्षक था। ये लुइसविले केंटकी में है। और सो पिताजी अपने सबसे बड़े भाई का पता लगाने के लिए आए। पिताजी लड़कों में सबसे छोटे थे, 17 बच्चों में। और सो वह अपने बड़े भाई का पता लगाने के लिए आए, और जबकि वो लगभग एक वर्ष के लिए चले गए थे, वो वापस नहीं आ सकते थे क्योंकि कानून उन्हें ढूंढ रहा था। और जब हमने उनसे एक पत्र के माध्यम से सुना जिसके ऊपर किसी और नाम से हस्ताक्षर थे, लेकिन उन्होंने माँ को बताया था ये कैसा रहेगा कि वह उसी से सुने। और फिर मुझे याद है कि एक दिन एक झरने पर, जो कि एक छोटी सी कोठरी उसके बस ठीक पीछे था, और उस समय के दौरान वहाँ नौ मेरे और मेरे अगले भाई के बीच में 11 महीने का फर्क है, और वो अभी भी रेंगता था, और मेरे हाथ में एक बड़ा पत्थर था, और मैं उसे ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं उस कीचड़ में कितनी जोर से इस पत्थर को फेंक सकता हूँ, जहाँ पर सोता जमीन से बाहर निकलता था और एक कीचड़ से भरी जमीन बन गई थी। और मैंने एक चिड़िया को सुना और ये पेड़ के ऊपर गा रही थी, और मैंने उस पेड़ के ऊपर देखा और चिड़िया उड़ गई, और जब ये उड़ गई एक आवाज ने मुझसे बात की। अब मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे हैं कि मैं उस बात को सोच नहीं सकता और उसको याद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन प्रभु परमेश्वर, जो कि धरती और आकाश का न्यायी है और उन सभी चीजों का जो यहाँ पर है, वो ये जानता है कि मैं सच कह रहा हूँ। वो चिड़िया जब वो उड़ गई, एक आवाज वहाँ से आई जहाँ पर वो चिड़िया पेड़ पर बैठी थी, जैसे कि कोई हवा झाड़ी में अटक गई हो, और उसने कहा तुम एक शहर के पास रहोगे जिसका नाम न्यू अल्बानी है। और तब से लेकर जब मैं 3 वर्ष का था, इस समय तक मैं न्यू अल्बानी इंडियाना के 3 मील के दायरे के अंदर ही रहा हूँ। मैंने अंदर जाकर और अपनी माँ को इस विषय में बताया। खैर, उसने सोचा कि मैं बस स्वप्न या कुछ तो देख रहा था। और उसके बाद हम इंडियाना चले गए और पिताजी एक व्यक्ति के लिए काम करने चले गए जिसका नाम श्रीमान वेथेन था, जो एक धनी व्यक्ति था। वो वेथेन शराब कारखाने के मालिक थे और उसमें उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा था। वो लुइसविले कॉलोनेल्स और बेसबॉल और इत्यादि खेलने वालों में अरबपति हैं। और फिर हम वहाँ पास में रहते थे, और पिताजी एक निर्धन व्यक्ति होने पर फिर भी वो शराब पिए बिना नहीं रह सकते थे, इसलिए वो शराब की भट्टी में विस्की बनाने के लिए चले गए। और तब इस बात से मुझ पर काम का बोझ बढ़ गया, क्योंकि मैं सब बच्चों में सबसे बड़ा लड़का था। मुझे इस शराब की भट्टी में आकर और वहाँ तक पानी ढोकर लाना पड़ता था, जिससे कि जब वे शराब बना रहे होते थे तो कुंडलियों को ठंडा रखा जा सके। तब उसने उसे बेचना आरंभ कर दिया, और फिर उनके पास 2 या 3 शराब की भट्टियां और हो गई। अब यही वो भाग है जो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। और मुझे याद है कि एक दिन मैं खट्टे से घर तक रोता हुआ आ रहा था, क्योंकि उस स्थान के पीछे एक तालाब था, वो जहाँ पर वे बर्फ को काटा करते थे। आप में से बहुत लोग ये जानते हैं कि जब वे बर्फ को काटा करते हैं और उसे सूखी भूसी में रखा करते हैं, अच्छा यही तरीका है जिससे कि श्रीमान वेथेन उस देश में बर्फ को रखा करते थे। और पिता उनके लिए एक कार चालक थे, उनके निजी कार चालक थे। और जब यह तालाब मछलियों से भरा हुआ था, और जब वे बर्फ को काटने जाते थे और उसे अंदर लाते थे और उसे सूखी भूसी में रखते थे, और जब गर्मियों के समय में बर्फ पिघलकर जैसे ये नीचे की ओर जाती थी, मैं समझता हूँ कि वह एक प्रकार से साफ होती थी, और ये बहुत अधिक बर्फ की झील के समान होती थी। और वे इसका उपयोग पीने के लिए नहीं, लेकिन पानी को ठंडा रखने के लिए करते थे। उसे उनके बाल्टियों और उनके दूध और इत्यादि चीजों के चारों ओर रखते थे। और एक दिन मैं वहाँ पीछे इस पंप से पानी को उठाकर ला रहा था, जो शहर के ब्लॉक के बराबर था। मैं उनके लिए जोर से चिल्ला रहा था, जिन्हें यह नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि मैं स्कूल से वापस आया था और सभी लड़के वहाँ तालाब में मछली पकड़ने गए थे। मुझे बस मछली पकड़ना अच्छा लगता था और सो मुझे छोड़ वे सभी मछली पकड़ने के लिए गए थे और मुझे इस शराब की भट्टी के लिए पानी लाना था। अवश्य ही ओ प्रभु, यह मेरी माँ ने किया था, इस पर रोक थी और मैं, यह क्या ही परिश्रम का काम था। और मुझे याद है कि मैं वहाँ से पैर के अंगूठे में चोट खाकर आया था और अपने पैर के अंगूठे को धूल से बचाने के लिए मैंने उसके नीचे मक्के के भुट्टे को लपेट लिया था। क्या आपने कभी वैसा किया है, बस अपने पैर के अंगूठे के नीचे मक्के के भुट्टे को इस प्रकार से रखकर और उसके चारों ओर धागे को लपेट देते हैं? यह आपके पैर के अंगूठे को लगभग कछुए के सिर की तरह ऊपर उठाए रखेगा। आप जानते हैं, जहाँ कहीं मैं जाऊँगा आप मेरा पता लगा सकते हैं। मेरे अंगूठे के नीचे इस मक्के के भुट्टे के साथ जहाँ कहीं मैं इससे अपने पैर को रखूँगा आप जान जाएंगे। मेरे पास पहनने के लिए जूते नहीं थे, सो हमने कभी भी जूते नहीं पहने। कभी कभी ऐसे ही आधी सर्दियां बीत जाती थी। यदि हम पहना करते थे, हम बस ऐसा होता था कि हमें किसी के द्वारा दिए गए होते थे और वस्त्र जो हमें किसी के प्रेम दान के द्वारा मिल जाया करते थे। और मैं इस पेड़ के नीचे रुक गया और मैं बस वहाँ पर बैठा हुआ जोर से चिल्ला रहा था। यह सितंबर का महीना था क्योंकि मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था। मुझे पानी के बहुत से टब को ढोकर लाना था उन छोटे गुड़ की बाल्टियों के साथ, बस लगभग इतनी ऊंची, आधा गैलन, क्योंकि मैं बस लगभग 7 वर्ष का एक छोटा सा बच्चा था। और मैं उन्हें एक बड़े से टब में उढ़ेल देता और फिर वापस जाकर और दो और दूसरी बाल्टियों को लाता और वापस आकर उन्हें पंप से भरता था। हमारे पास यही पानी होता था। और उस रात वे लोग मेरे पिता के साथ उस घर में ऊपर मक्के से बनी हुई विस्की के एक जत्थे को भेजने जा रहे थे और मैं रो रहा था और अचानक मैंने किसी चीज को चक्रवात की तरह आवाज करते हुए सुना, कुछ तो इस तरह से। अब मैं आशा करता हूँ कि यह बहुत तेज आवाज नहीं होगी, इस तरह से चल रही थी, उश, उश, बस इस तरह की आवाज। तो वहाँ पूरी तरह से शांति थी और मैंने चारों ओर देखा और आप जानते हैं कि क्या, एक छोटा सा भवंडर। मैं सोचता हूँ कि आप उन्हें छोटे छोटे चक्रवात कहते हैं। वर्ष के शरद ऋतु में वे मक्के के खेत में से गोल गोल घूमकर बटोरते हैं, आप जानते हैं, उन पत्तियों और ऐसी ही चीजों को। शरद ऋतु में पत्तियां तब बदलना आरंभ होती हैं और मैं एक बहुत बड़े सफेद पीपल के पेड़ के नीचे था जो खट्टे और उस घर के लगभग बीच में था और मैंने उस शोर को सुना और मैंने चारों ओर देखा। ये बस उसी प्रकार का सन्नाटा था जैसे इस कमरे में है। कोई भी पत्ता कहीं पर भी नहीं हिल रहा था या कुछ भी नहीं। और मैंने सोचा, वो आवाज कहाँ से आ रही है? खैर, मैंने सोचा यह अवश्य ही यहाँ पर से दूर होगा। मैं बस एक बच्चा था और ये और भी तेज होती गई। मैंने छोटी बाल्टियों को उठाया और दो बार और जोर से चिल्लाया और उस रास्ते पर आगे चल पड़ा। मैं आराम कर रहा था और मैं बस उसके कुछ फुट दूर पर पहुंच गया, अर्थात इस बड़े पेड़ की डालियों के नीचे। ओ प्रभु, इसने भवंडर जैसी आवाज की और मैं देखने के लिए मुड़ा और उस पेड़ पर लगभग उसकी आधी ऊंचाई पर एक और भवंडर था, उस पेड़ में रुका हुआ था, बस उन पत्तियों में गोल गोल और गोल गोल घूम रहा था। अच्छा, मैंने सोचा कि इसके विषय में कोई विचित्र बात नहीं है क्योंकि यह वर्ष का वही समय था और शरद ऋतु था। क्यों? जिसमें वे भवंडर आते हैं छोटे, हम उन्हें चक्रवात कहते हैं, और वे धूल को उठा लेते हैं। आपने रेगिस्तान में उन्हें उस प्रकार से देखा है, वही चीज तो मैंने देखा, लेकिन ये रुका नहीं। अक्सर ऐसा होता है, ये कुछ क्षण के लिए झोंका आता है फिर वो चला जाता है, लेकिन ये वहाँ पर 2 मिनट या उससे ज्यादा समय से था। अच्छा, मैंने उस रास्ते पर फिर से आगे जाना आरंभ किया और मैं उसे देखने के लिए फिर से पीछे मुड़ा और जब ऐसा हुआ, बिल्कुल मेरी आवाज की तरह स्पष्ट सुनाई देने वाली एक मनुष्य की आवाज, कहा, तुम कभी भी शराब नहीं पीना, न धूम्रपान करना या किसी भी प्रकार से अपने शरीर को दूषित न करना। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे लिए एक काम होगा जो तुम्हें करना है। क्यों? ऐसा लगा कि उस बात से मेरे अंदर मृत्यु सा डर आ गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक छोटे से बच्चे ने कैसा अनुभव किया होगा। मैंने उन बाल्टियों को गिरा दिया और जितनी तेजी से हो सकता था पूरी ताकत से चिल्लाते हुए घर गया। और वहाँ उस देश में कॉपर हेड नामक सांप थे और वे बहुत ही जहरीले होते हैं। माँ ने सोचा कि जब मैं बगीचे के पास से आ रहा होऊंगा तो मेरा पैर इस कॉपर हेड सांप पर पड़ गया होगा और वह मुझसे मिलने के लिए भागी और मैं चिल्लाते हुए उसकी बाहों में कूद पड़ा और उन्हें लिपट गया और उसे चूमने लगा और उसने कहा, क्या बात है, क्या तुम्हें सांप ने काट लिया? वो मुझे हर कहीं देखने लगी। मैंने कहा, नहीं माँ, वहाँ पर नीचे जो पेड़ है उसमें एक मनुष्य है। और उसने कहा, ओह बिली बिली, आपे में आओ। और उसने कहा, क्या तुम रुक कर और सो गए थे? मैंने कहा, नहीं माँ, उस पेड़ के अंदर एक मनुष्य है। और उसने मुझे बताया कि शराब नहीं पीना और धूम्रपान नहीं करना, बिस्की नहीं पीना और इत्यादि चीजें। और ठीक तभी मैं मून शाइन नामक शराब की भट्टी के लिए पानी उठाकर ले जा रहा था। और उस व्यक्ति ने कहा, तुम कभी भी शराब नहीं पीना और अपने शरीर को किसी भी प्रकार से दूषित नहीं करना, यह अनैतिक बात है, आप जानते हैं। और मेरे बच्चों, स्त्रियों के साथ युवा पुरुषत्व का होना और मेरी पूरी कोशिश रही, मैं एक बार भी ऐसा करने का दोषी नहीं रहा हूँ। प्रभु ने मेरी उन बातों में सहायता की है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आप ये जान जाएंगे। सो तब तुम कभी शराब नहीं पीना या धूम्रपान न करना या अपने शरीर को किसी भी प्रकार से दूषित न करना, क्योंकि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे लिए एक काम होगा। अच्छा, मैंने ये बात माँ को बताई और वह तब मेरे ऊपर हंसी और मैं बस पागलों की तरह हो गया था। उसने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने कहा, अच्छा, वह बस घबराया हुआ है, बस यही बात है। सो माँ ने मुझे बिस्तर में लिटा दिया और मैं कभी भी उस दिन से लेकर अब तक उस पेड़ के पास से होकर नहीं गुजरा। मैं भयभीत था, मैं बगीचे के दूसरी ओर से जाया करता था, क्योंकि मैं ये सोचता था कि ऊपर उस पेड़ में एक मनुष्य है और वो मुझसे बात कर रहा था। एक बड़ी गंभीर आवाज थी जो बोल रही थी। और फिर उस बात के कुछ एक महीने के बाद मैं अपने छोटे भाइयों के साथ बाहर आगे के आंगन में कंचे खेल रहा था और अचानक से एक विचित्र सी अनुभूति मेरे ऊपर आई और मैं रुक गया और एक पेड़ के पास में बैठ गया। और हम ठीक ओहियो नदी के तट पर थे और मैंने जेफरसन विले की ओर देखा और मैंने एक पुल को ऊपर उठते हुए देखा और उस नदी के यहाँ से वहाँ पार जाते हुए जो उस नदी को पार करती है। और मैंने 16 व्यक्तियों को देखा, मैंने उन्हें गिना जो वहाँ पर से गिर पड़े और उस पुल पर उनकी मृत्यु हो गई। मैं बहुत जल्दी से भाग कर गया और अपनी माँ को बताया और उसने सोचा कि मैं सो गया था, लेकिन उन्होंने उस बात को मन में रखा। और उस बात के 22 वर्ष के बाद, जो अब नगर निगम का पुल है जिसको आप में से बहुत से लोग पार करते हैं जब वहाँ से गुजरते हैं, उसी स्थान पर नदी के आर पार बनाया गया था। और नदी के ऊपर उस पुल को बनाते हुए 16 व्यक्तियों ने अपने जीवन को गवा दिया। यह पूरी तरह से सत्य होने से कभी नहीं चूका है। जैसे आप इसे इस सभागार में देखते हैं, यह हर समय इसी तरह से रहा है। अब उन्होंने सोचा कि मैं बस घबरा गया हूँ, जो कि मैं एक बेचैन व्यक्ति हूँ। यह सच बात है। और यदि आप कभी ध्यान दें, जिन लोगों का झुकाव आत्मिकता की तरफ होता है वे बेचैन होते हैं। कवियों और भविष्यवक्ताओं की ओर देखिए और विलियम काउपर को देखें, जिसने कि उस प्रसिद्ध गीत को लिखा था, लहू से भरा हुआ एक सोता है, जो कि इमैनुअल की नसों में से निकला है। क्या आपने कभी, आप उस गीत को जानते हैं? ज्यादा समय नहीं हुआ जब मैं उसकी कब्र के पास खड़ा हुआ था। भाई जूलियस, मैं विश्वास करता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, नहीं, जी हाँ, यह सही है, वो हमारे साथ वहाँ उस कब्र पर थे। और वहाँ पर उस गीत को लिखने के बाद प्रेरणा उसको छोड़कर चली गई। उसने आत्महत्या करने के लिए एक नदी को ढूंढने की कोशिश की, समझे, आत्मा ने उसको छोड़ दिया था। और लोग कवियों और लेखकों को पसंद करते हैं, और या मेरा मतलब भविष्यवक्ताओं से है। एलिया की ओर देखें, जब वो पहाड़ी पर खड़ा होकर और आकाश से आग को बुलाया और आकाश से वर्षा को बुलाया, तब फिर जब आत्मा उसको छोड़कर चला गया, वो एक स्त्री की धमकी मिलने पर भाग गया और 40 दिन के बाद परमेश्वर ने उसको एक गुफा में छिपा हुआ पाया। योना को देखें, जब परमेश्वर ने उसे पर्याप्त प्रेरणा के साथ निनवे शहर में प्रचार करने के लिए अभिषिक्त किया था, यहाँ तक कि संत लुईस शहर के आकार जितने एक शहर ने टाट पहनकर पश्चाताप किया था। और फिर जब आत्मा ने उसे छोड़ दिया तो उसे क्या हुआ था? जब आत्मा ने उसे छोड़ दिया, हम उसे पहाड़ के ऊपर परमेश्वर से अपना जीवन ले लेने के लिए प्रार्थना करते हुए पाते हैं। और आप देखो, यह प्रेरणा होती है। और जब ये बातें घटित होती हैं, तो ये आपके लिए कुछ तो करता है। फिर मुझे याद है कि मैं वहाँ पर गया, मैं एक युवा व्यक्ति हो गया था। मैं आगे की कुछ बात को कहने में जल्दी करूँगा। जब मैं एक युवा व्यक्ति बन गया, तब मेरे विचार सभी युवा लोगों के समान थे। मैं स्कूल जाते समय उन छोटी लड़कियों को पाया। आप जानते हैं, मैं बहुत ही शर्मीला था, आप जानते हैं। और मुझे अंत में एक छोटी सी लड़की मित्र मिल गई, और जैसे सभी छोटे लड़के होते हैं जो लगभग 15 वर्ष के होते हैं, मेरा अनुमान है। और सो ओह, वो सुंदर थी। ओ, उसकी आंखें एक पिंडुकी के समान थी और उसके दांत मोती की तरह थे और उसकी गर्दन हंस के समान थी और वो बहुत ही सुंदर थी। और एक और छोटा लड़का, वह हम मित्र थे, तो उसने अपने पिता की पुराने मॉडल की T4 की कार ली और हम अपनी लड़की मित्रों के साथ बाहर घूमने गए और हम उन्हें गाड़ी में घुमाने बाहर ले जाया करते थे। हमारे पास 2 गैलन पेट्रोल को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा था। हमें गाड़ी को चालू करने के लिए पिछले पहिए को चेक लगाकर उठाना होता था। मुझे यह नहीं पता कि आपको यह याद है कि नहीं कि उसे कैसे चालू करना है, आप जानते हैं, लेकिन हम दोनों की अच्छी बन रही थी। और सो मेरे जेब में कुछ 5 सेंट के सिक्के थे और हम एक स्थान पर रुके और आपको हैम सैंडविच 5 सेंट में मिल जाता था। और सो ओह, मैं धनी था, मैं उनमें से 4 को खरीद सकता था, समझे। और सैंडविच को खाने के बाद और कोका कोला को पीने के बाद मैं उन बोतलों को वापस रखने लगा और जब मैं वापस आया तो मैं आश्चर्य में पड़ गया। उस समय पर उस स्त्री ने अनुग्रह से और नारीत्व से गिरना आरंभ कर दिया। मेरी छोटी पिंडुकी सिगरेट पी रही थी। अच्छा, एक स्त्री जो सिगरेट पीती है उसके लिए मेरे पास अपनी हमेशा ही एक राय रही थी और उस समय से लेकर मैंने उसको थोड़ा सा भी नहीं बदला है। यह सही बात है, यह एक सबसे गिरी हुई चीज है जो कि वह कर सकती है और यह बिल्कुल सही बात है। और मैंने सोचा मैं अब सिगरेट की कंपनी इस बात के बाद मेरे पीछे पड़ जाएगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, यह बस शैतान का एक हथकंडा है। ये सबसे बड़ा हथियारा और विनाशक है जो इस राष्ट्र के पास है। मेरा बच्चा सिगरेट पीने की बजाय एक शराबी हो, मैं ऐसा चाहूँगा। यह एक सच्चाई है, मैं अपनी पत्नी को फर्श पर शराब पीकर पड़ा हुआ देखना ज्यादा पसंद करूँगा बजाय इसके कि उसे सिगरेट के साथ देखूँ। ऐसे ही अब यह परमेश्वर की आत्मा जो मेरे साथ है, यदि यही वो परमेश्वर की आत्मा है, जैसे आप प्रश्न कर सकते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपके पास बहुत ही कम मौका होता है क्योंकि यह बस हर बार होता है। आपने इसे मंच पर देखा होगा कि कैसे वह इसे दोषी ठहराता है। यह एक भयानक चीज है, इस चीज से दूर रहें। महिलाएं, यदि आप उस चीज के लिए दोषी पाई जाती हैं, कृपया मसीह के नाम में उस चीज से दूर हट जाएं। यह आपको तोड़ देता है, यह आपको मार डालेगा। यह एक कैंसर से भरा मालगाड़ी का डब्बा है। डॉक्टर आपको चेतावनी देने की कोशिश करते हैं और फिर वे आपको इस चीज को भला कैसे बेच सकते हैं। यदि आप दवा की दुकान पर जाकर और कहते हैं, खरीदते हैं, मैं 50 सेंट का कैंसर खरीदना चाहता हूं, क्यों? वे आकर और उसे बंद कर देंगे, लेकिन जब आप 50 सेंट की सिगरेट खरीदते हैं आप उसी चीज को खरीद रहे होते हैं। डॉक्टर ऐसा कहते हैं, ओह, यह राष्ट्र पैसों के पीछे पागल है, यह बहुत ही बुरी चीज है, यह एक हत्यारा है, इसे सिद्ध किया जा चुका है। अच्छा, जब मैंने उस सुंदर सी छोटी लड़की को हाथ में सिगरेट लिए हुए बस तेज तरार की तरह व्यवहार करते हुए देखा, उस बात ने लगभग मुझे मार डाला क्योंकि मैंने वास्तव में सोचा कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। और मैंने सोचा, अच्छा, अब मुझे स्त्रियों से घृणा करने वाला कहा जाता है, आप ये जानते हैं, क्योंकि मैं हमेशा एक प्रकार से स्त्रियों के विरोध में रहा हूँ। लेकिन बहनों, आपके विरोध में नहीं, मैं बस आधुनिक महिलाओं के व्यवहार के विरोध में हूँ। ये सही है, अच्छी स्त्रियों को साथ में लेकर चलना चाहिए। लेकिन मैं याद कर सकता हूँ जब मेरे पिता शराब की भट्टी वहाँ चला रहे होते थे, मुझे वहाँ बाहर पानी और चीजों को लाना होता था। युवा स्त्रियों को देखता जो 17-18 वर्ष से ज्यादा नहीं थी, वे वहाँ ऊपर मेरी अभी के उम्र के पुरुषों के साथ थी, शराब पिए हुए, और उनको उन्हें होश में लाने के लिए काली कॉफी देनी पड़ती थी जिससे कि वे वापस घर जाकर अपने पतियों के लिए रात का भोजन पका सकें। ओह, इसी तरह से कुछ तो मैंने कहा, मैं तब मेरी टिप्पणी यह थी, वे एक अच्छी साफ बंदूक की गोली के लायक भी नहीं है जिससे कि उन्हें मारा जा सके। यह सही है, और मैंने स्त्रियों से घृणा की, यह सही है, और मुझे बस हर एक गतिविधि पर अब ध्यान देना है ताकि मैं अभी भी वही चीज सोचने से खुद को रोक सकूं। सो लेकिन अब एक अच्छी स्त्री एक पुरुष के सिर के मुकुट में जड़े मोती के समान होती है, उसको आदर देना चाहिए। वह मेरी माँ एक स्त्री है, मेरी पत्नी स्त्री है, और वे बहुत ही प्रिय हैं, और मेरी हजारों मसीही बहनें हैं जिनका मैं बहुत ही आदर करता हूँ। लेकिन यदि वे बस परमेश्वर द्वारा बनाए गए स्वरूप में आदर कर सके, एक मातृत्व के रूप में और एक सच्ची रानी, ये अच्छी बात है। वो उन सबसे अच्छी चीजों में से एक है जो परमेश्वर किसी पुरुष को दे सकता है, तो वो एक पत्नी है। उद्धार को छोड़, एक पत्नी सबसे अच्छी चीज है यदि वो एक अच्छी पत्नी है, लेकिन यदि वो नहीं है। सुलेमान ने कहा, एक अच्छी स्त्री एक पुरुष के सिर के मुकुट में जड़े मोती के समान होती है, परंतु एक चिड़चिड़ी स्त्री या जो किसी भी काम की नहीं है तो वो उसके लहू में पानी के समान है। और ये सही है, ये सबसे बुरी चीज हो सकती है। इसलिए एक भली स्त्री, भाई यदि आपके पास में एक अच्छी पत्नी है तो आपको उसका बहुत अधिक सम्मान करना चाहिए। यह सही है, आपको ऐसा करना चाहिए। एक सच्ची स्त्री और बच्चों, यदि आपके पास एक सच्ची माँ है जो घर पर रहती है और आपका ध्यान रखने की कोशिश करती है, आपके कपड़ों को साफ रखती है, आपको स्कूल भेजती है, आपको यीशु के विषय में सिखाती है, आपको अपनी पूरी ताकत से उस प्यारी सी बूढ़ी माँ का आदर करना चाहिए, आपको उस स्त्री का आदर करना चाहिए। जी हाँ श्रीमान, क्योंकि वो एक सच्ची माँ है। वे केंटकी के पहाड़ी इलाकों के लोगों की अशिक्षा की बातें करते हैं। आप इसे यहाँ इस गरीब सीधे सादे ग्रामीण समुदाय जैसी चीजों में देखते हैं। वहाँ की कुछ बूढ़ी माताएं जो यहाँ हॉलीवुड आकर आधुनिक माताओं को यह सिखा सकती हैं कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है। आपका बच्चा एक रात घर आए, उसके सारे बाल बिखरे हुए हों और होठों पर से हट गया हो, आप उस चीज को क्या कहते हैं? श्रृंगार की चीजें जो वे अपने चेहरे पर लगाती हैं, और उसके कपड़े एक तरफ से कसे हुए हों और सारी रात बाहर रही है नशे में, तो भाई वो माँ उस हिंकोरी पेड़ के ऊपर से एक मजबूत डाली तोड़ लेती और वो उसके बाद कभी बाहर नहीं जाती। मैं आपको बताता हूँ वह, और यदि आज थोड़ा सा भी वैसा अनुशासन होता तो यहाँ एक बेहतर हॉलीवुड होता और एक बेहतर राष्ट्र भी। यह सही है, यह सत्य है। बस आधुनिक होने का यत्न करती हैं। यह शैतान की चालों में से एक चाल है। अब यह छोटी लड़की, जब मैंने उसकी ओर देखा मेरा हृदय बस लहूलुहान हो गया और मैंने सोचा बेचारी छोटी लड़की। और उसने कहा, ओह बिली, क्या तुम एक सिगरेट लेना चाहोगे? मैंने कहा, नहीं महोदया, मैंने कहा मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ। उसने कहा, अब तुमने कहा कि तुम नाचते नहीं हो, वे नाचने के लिए जाना चाहते थे और मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा था। सो उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक नाच होता है जिसे उन्होंने साइके मोर गार्डन कहा, और मैंने कहा नहीं, मैं नाचता नहीं हूँ। उसने कहा, अब तुम नाचते नहीं हो, तुम सिगरेट नहीं पीते हो, तुम शराब नहीं पीते हो, तो तुम मौज मस्ती कैसे करते हो? मैंने कहा, तो ठीक है, मुझे मछली पकड़ना पसंद है और मुझे शिकार खेलना पसंद है। इस पर उसने कोई रुचि नहीं दिखाई, तो उसने कहा इस सिगरेट को लो, और मैंने कहा नहीं महोदया धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। और मैं कार के मडघाट पर खड़ा हुआ था, आपको याद है पुरानी फोर्ड कारों पर एक पायदान हुआ करता था, और मैं उस इंजन मडघाट पर खड़ा हुआ था। वह और मैं पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे, और उसने कहा तुम्हारा मतलब है कि तुम सिगरेट नहीं पियोगे? कहा, और हम लड़कियों को तुमसे ज्यादा साहस है? मैंने कहा, नहीं महोदया, मैं यह नहीं सोचता कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। उसने कहा, क्यों, तुम बड़े कायर हो? ओह प्रभु, मैं चाहता था कि मुझे एक बुरा बिल्ली कहा जाए, सो मैं निश्चित रूप से यह नहीं चाहता था कि मुझे कायर कहा जाए। समझी, मैं एक पुरस्कार योद्धा होना चाहता था, यह मेरे जीवन का विचार था। तो मैंने कहा, कायर कायर, मैं उस बात को सहन न कर सका, इसलिए मैंने कहा इसे मुझे दो। मेरे हाथ को आगे किया, मैंने कहा मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कायर हूँ कि नहीं। उस सिगरेट को निकाला और माचिस को जलाना आरंभ किया। अब मैं जानता हूँ कि आप, अब मैं इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ कि आप क्या सोचते हैं, मैं बस सत्य बताने के लिए जिम्मेदार हूँ। जब मैंने उस सिगरेट को जलाना आरंभ किया, मैं बस धूम्रपान करने के लिए उतना ही दृढ़ था जितना मैं इस बाइबल को उठाने के प्रति होता हूँ। देखो, मैंने किसी चीज को ऐसे जाते हुए सुना, कुश। मैंने फिर से कोशिश की, मैं सिगरेट को अपने मुंह तक नहीं ले जा सका और मैं रोने लगा। मैंने उस चीज को नीचे फेंक दिया, वे मुझ पर हंसने लगे और मैं चलकर घर गया। खेत में से होते हुए वहाँ बाहर बैठकर रोने लगा, और वो एक भयानक जीवन था। मुझे याद है कि एक दिन पिताजी लड़कों के साथ नदी की ओर जा रहे थे, मुझे और मेरे भाई को, हमको एक नाव लेकर और नदी के उस पार जाना था और फिर वापस आना था। विस्की को डालने के लिए बोतलों को ढूंढना था। नदी के किनारे से एक दर्जन बोतलों को ढूंढने पर हमें 5 सेंट मिलते थे, और पिताजी मेरे साथ थे और उनके पास उन छोटी चपटी बोतल में से एक थी। मैं सोचता हूँ कि वे लगभग 1/4 लीटर की बोतलें थी, और वहाँ एक पेड़ गिरकर नीचे पड़ा था, और पिताजी और ये व्यक्ति श्रीमान डॉर्न बुश उनके साथ थे। मेरे पास उनके पास एक अच्छी नाव थी, और मैं उनसे एक सहायता चाहता था क्योंकि मैं उनकी नाव का उपयोग करना चाहता था। उसमें एक अच्छी पतवार थी और मेरी नाव में पतवार बिल्कुल भी नहीं थी। हमारे पास बस पैर मारकर चलाने के लिए पुराने बोट थे और यदि वह मुझे अपनी नाव का उपयोग करने देते तो उन्होंने वेल्डिंग करके और पिताजी के लिए शराब की भट्टियों को बनाया। अतः उन्होंने अपने पैरों को पेड़ के दोनों ओर डाला और पिताजी ने अपनी पीछे की जेब में हाथ डाला और उन्होंने विस्की की एक छोटी चपटी बोतल को बाहर निकाला, उन्हें दे दी और उन्होंने उसे पिया। उसे वापस पिताजी को दिया और उन्होंने भी इसे पिया और उसने उसे पेड़ के किनारे एक छोटे से तने पर रख दिया जो बाहर निकला हुआ था। और श्रीमान डॉर्नबुश ने बोतल को उठाया, कहा, बिल्ली अब तुम्हारी बारी है। मैंने कहा, धन्यवाद, मैं शराब नहीं पीता हूँ। उसने कहा, एक ब्रहणम और शराब नहीं पीता है। हर एक जन लगभग उनके जूतों को पहने हुए मर गए और उन्होंने कहा, एक ब्रहणम और शराब नहीं पीता। मैंने कहा, नहीं श्रीमान, नहीं। पिताजी ने कहा, मैंने एक कायर को पाल कर बड़ा किया है। मेरे पिताजी मुझे कायर कह रहे हैं। मैंने कहा, मुझे उस बोतल को देना। और मैंने बोतल के ऊपर से उसका ढक्कन हटाया, उसे पीने के लिए ठान लिया और जब मैं उसे ऊपर उठाने लगा, उश, मैंने बोतल वापस कर दी और जितनी जल्दी मैं जा सकता था मैं उस खेत में से होते हुए चला गया रोते हुए। कोई तो चीज मुझे ऐसा नहीं करने दे रही थी, समझे। मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि मैं कितना अच्छा था, मैंने ऐसा करने के लिए ठान लिया था, लेकिन ये परमेश्वर था, अनुग्रह, अद्भुत अनुग्रह जो मुझे उन बातों को करने के लिए रोकता था। मैं स्वयं उनको करना चाहता था लेकिन वो बस मुझे ऐसा करने नहीं देता था। बाद में जब मैं लगभग 22 वर्ष का हो गया था, मुझे एक लड़की मिली। वो बहुत ही प्यारी थी। वो ऐसी लड़की थी जो जर्मन लूथरन कलीसिया में जाती थी। उसका नाम ब्रम्बैंग था, BRUMBACH, जो ब्रह्मांग के नाम से आया है। और वो एक अच्छी लड़की थी। वो सिगरेट या शराब नहीं पीती थी, या वो ना ही नाचती थी या कुछ और करती थी। एक अच्छी लड़की थी। मैं कुछ समय के लिए उसके साथ में गया और तब मैं लगभग 22 वर्ष का था। मैंने पर्याप्त धन कमाकर अपने लिए एक पुरानी फोर्ड कार खरीद ली थी और मैं हम एक दूसरे के साथ बाहर मिलते जुलते थे। और सो उस समय नजदीक में कोई लूथरन कलीसिया नहीं थी। वे वहाँ हार्वर्ड पार्क से आए हुए थे और इसलिए वे एक सेवक था जिसने मुझे मिशनरी बैप्टिस्ट कलीसिया में नियुक्त किया था, जिसका नाम डॉक्टर रॉय डेविस था। बहन उपशा यह वही थी जिसने भाई उपशा को मेरे पास भेजा या मेरे विषय में उनसे बात की डॉक्टर रॉय डेविस से। और सो वे प्रचार कर रहे थे और उनकी फर्स्ट बैप्टिस्ट कलीसिया थी, या वो मैंने सोचता कि यह फर्स्ट बैप्टिस्ट कलीसिया थी, या तो ये मिशन। उसको जेफरसन विले की मिशनरी बैप्टिस्ट कलीसिया कहा जाता था और वो उस स्थान पर उस समय प्रचार कर रहे थे और हम रात को कलीसिया जाया करते थे। सो और हम वापस आ जाते और मैं कभी भी कलीसिया का सदस्य नहीं बना, लेकिन मुझे बस उस लड़की के साथ में जाना अच्छा लगता था, क्योंकि असली वजह तो बस उसके साथ जाना था। मुझे बस इसे बताने में ईमानदार बने रहना है, इसलिए तब उसके साथ जाते हुए और एक दिन मैं, वो एक अच्छे परिवार से थी और मैं सोचने लगा, तुम जानते हो मुझे उस लड़की का समय नहीं लेना चाहिए, यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है और मैं गरीब हूँ और मेरे पिता का स्वास्थ्य बिगड़ गया था और मेरे पास इस तरह की लड़की के लिए जीविका चलाने का कोई जरिया नहीं था, जिसको एक अच्छे घर में रहने की आदत थी और वहाँ फर्श पर कालीन था। मुझे वो पहला कालीन याद है जिसको मैंने कभी देखा था। मुझे यह भी नहीं पता था कि यह क्या था। मैं उसके किनारे पर से चला। मैंने सोचा कि यह सबसे सुंदर चीज है जो मैंने अपने जीवन में कभी देखी है। वे इस प्रकार की किसी चीज को भला फर्श पर कैसे बिछा सकते हैं? यह पहला कालीन था जो मैंने कभी देखा था। यह उनमें से एक था। मैं सोचता हूँ कि उसे चटाई कालीन कहा जाता है। हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। किसी प्रकार की लचीली टहनियों से बना या कुछ ऐसी चीज जिसको एक साथ बांधा गया हो और फर्श पर बिछा दिया हो, सुंदर सी हरे और लाल रंग की, और उसके मध्य में एक बड़े से गुलाब के फूल की कढ़ाई की गई थी। आप जानते हैं यह एक सुंदर चीज थी। और तो मुझे याद है मैंने मेरे मन में तय किया कि या तो उससे मेरे साथ विवाह करने के लिए मुझे पूछना था, या तो मुझे अवश्य ही दूर जाना होगा और किसी भले व्यक्ति से उसका विवाह होने दूं। कोई तो ऐसा जो उसके प्रति अच्छा बना रहे, उसकी जीविका चला सके और उसके प्रति दयालु बना रहे। मैं उसके प्रति दयालु हो सकता था, लेकिन मैं एक घंटे में बस 20 सेंट ही कमाता था। तो मैं उसकी जीविका के लिए इतना अधिक नहीं कमा सकता था और मुझे सारे परिवार की हमें देखभाल करनी होती थी और पिता का स्वास्थ्य बिगड़ गया था और मुझे उन सभी की देखभाल करनी थी, इसलिए मैं एक बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा था। तो मैंने सोचा, अच्छा, मेरे लिए केवल एक ही बात है कि मैं उसको यह बताऊं कि मैं बस वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने उसके विषय में बहुत अधिक सोचा कि मैं उसके जीवन को बर्बाद न करूं और न ही उसे अपने साथ मूर्ख बनाऊं। और फिर मैंने सोचा, यदि कोई उसका हाथ थाम ले और उससे विवाह कर ले, एक प्यारे से घर को बसा सके, और हो सकता है यदि मैं उसको ना पा सकूं, मैं ये जान पाऊं कि वह खुश है। और सो मैंने सोचा, लेकिन मैं बस उसे नहीं छोड़ सकता हूं। और मेरी बहुत बुरी हालत थी और दिन प्रतिदिन मैं इसके विषय में सोचता, सो मैं बहुत ही संकोची था कि उससे मेरे साथ विवाह करने के लिए पूछूं। प्रत्येक रात मैं अपने मन को तैयार करता, मैं उससे पूछूंगा, और जब मैं ये क्या है, पेट में कुछ हलचल होने लगती है, या आपको कुछ तो होता है, आप सभी भाई जो कि वहाँ पर हैं, आपको भी शायद यही अनुभव हुआ होगा। और एक बहुत ही विचित्र सी अनुभूति, मेरा चेहरा गर्म हो जाता, मैं यह नहीं जानता, मैं उससे नहीं पूछ पाता था। सो मुझे लगता है कि आप यह सोचेंगे कि मेरा विवाह कैसे हुआ होगा। आप जानते हैं कि क्या हुआ, मैंने उससे एक पत्र लिखकर पूछा, और सो वह अब ये कोई प्रिय कुमारी जैसा पत्र नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा, आप समझते हैं, प्रेम से भरा हुआ था। वह बस एक समझौता नहीं था, यह था मैं जितनी अच्छी तरीके से लिख सकता था उसे लिखा। और मैं उसकी माँ से थोड़ा डरा हुआ था, उसकी माँ वो एक प्रकार से कठोर थी, और लेकिन उसके पिता एक नम्र बुजुर्ग सज्जन डचमैन थे, बस एक भले बुजुर्ग व्यक्ति थे। वो रेलवे में काम करने वाले ट्रेन कर्मचारियों के संघ को संगठित करने का कार्य करता था। उन दिनों में वो एक महीने में लगभग $500 कमाते थे और मैं एक घंटे में 20 सेंट कमाता था उनकी बेटी से विवाह करने के लिए। मैं जानता था कि इससे बात नहीं बनेगी। और उसकी माँ बहुत ही, अब वो एक भली महिला है और उनका एक प्रकार से समाज में ऊंचा स्थान था, आप जानते हैं, जैसे नक्चड़ी, आप जानते हैं, और इसलिए वैसे भी उसे मेरी ज्यादा जरूरत नहीं थी। मैं सिर्फ एक साधारण सा देहात का देसी लड़का था, और उसने सोचा कि होप को थोड़ा बेहतर वर्ग के लड़के के साथ जाना चाहिए, और मैं ये सोचता था कि वो सही है, और इसलिए, लेकिन मैंने तब इसे नहीं सोचा। अतः मैंने सोचा, खैर, अब मैं यह नहीं जानता हूँ कि कैसे, मैं उसके पिता से नहीं पूछ सकता हूँ, और मैं निश्चय ही उसकी माँ से नहीं पूछूंगा, और इसलिए मुझे पहले होप से पूछना होगा। इसलिए मैंने एक पत्र लिखा, और उस सुबह काम पर जाते समय मैंने उस पत्र को पत्र पेटी में डाल दिया। डाक, हम बुधवार रात को कलीसिया जा रहे थे और ये सोमवार की सुबह थी। मैं पूरे रविवार को उसे बताने की कोशिश करता रहा कि मैं विवाह करना चाहता हूँ, और मैं बस बताने का पर्याप्त साहस नहीं जुटा पाया। सो फिर मैंने इसे पत्र पेटी में डाल दिया, और उस दिन काम करते समय मैंने ये सोचा, क्या होगा यदि उसकी माँ को वो पत्र मिल गया। ओह प्रभु, तब मैं जान गया कि यदि वो पत्र उसके हाथ लग गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि उसने मेरे विषय में ज्यादा परवाह नहीं की। तो मुझे बस इस बात से पसीना आ रहा था। और बुधवार की उस रात को जब मैं आया, ओह प्रभु, मैंने सोचा मैं वहाँ पर कैसे जाऊंगा, यदि उसकी माँ के हाथ वो पत्र लग गया तो वह मेरी खूब क्लास लगाएगी, इसलिए मुझे आशा है कि उसे वह पत्र मिल गया होगा। मैंने वो पत्र होप को लिखा था, वही उसका नाम था, होप, और इसलिए मैंने कहा मैं बस इसे होप को लिखूंगा। और सो मैंने सोचा कि हो सकता है यह उसके हाथ में नहीं मिला होगा, इसलिए मैं यह जानता था बाहर रुककर हॉर्न बजाकर उसे बाहर आने के लिए बुलाना सही नहीं होगा। ओह प्रभु, और किसी भी लड़के के पास घर पर जाकर और द्वार खटखटाने और लड़की के हाथ मांगने का पर्याप्त साहस नहीं है, तो उसे वैसे भी उसके साथ बाहर जाने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल सही बात है, यह बिल्कुल ना समझी है, यह गिरी हुई बात है। और सो मैंने अपनी पुरानी फोर्ड कार को रोका, आप जानते हैं, और मैंने उसे पूरी तरह से चमका दी थी, और मैं वहाँ पर चला गया और दरवाजे पर खटखटाया। मुझ पर दया हो, उसकी माँ दरवाजे पर आई। मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। मैंने कहा, आप कैसी 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 हैं श्रीमती ब्रह्मेक? जी हाँ। उसने कहा, तुम कैसे हो विलियम? मैंने सोचा, ओह विलियम। और उसने कहा, क्या तुम अंदर आओगे? मैंने कहा, धन्यवाद। मैंने दरवाजे के अंदर कदम रखा। मैंने कहा, क्या होप लगभग तैयार हो चुकी है? और तभी होप घर में से उछलती हुई आई। वो बस 16 वर्ष की लड़की थी, और उसने कहा, हेलो बिली, और मैंने कहा हेलो होप, और मैंने कहा तुम कलीसिया के लिए लगभग तैयार हो? तो उसने कहा बस एक मिनट में। मैंने सोचा ओह प्रभु, उसे ये अभी तक नहीं मिला, उसे अभी तक नहीं मिला, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, होप को यह नहीं मिला होगा, इसलिए सब ठीक रहेगा, नहीं तो उसने मुझे बता दिया होता। इस तरह मुझे काफी तसल्ली हुई। और फिर जब मैं कलीसिया गया, मैंने यह सोचा क्या होगा यदि उसे यह मिला हो, समझे? और मैं यह नहीं सुन पा रहा था कि डॉक्टर डेविस क्या कह रहे थे। मैंने उसकी ओर देखा और मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं वह उस बात को छुपा रही है, और जब मैं यहाँ से निकलूं तो उस बात के लिए मुझे डांटेगी जो मैंने उससे पूछा था। और मैं यह नहीं सुन पा रहा था कि भाई डेविस क्या कह रहे हैं, और मैंने उसकी ओर देखा और मैंने सोचा ओह प्रभु, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन और मैं निर्णय की घड़ी निश्चय ही आएगी। इसलिए कलीसिया के बाद हमने सड़क पर एक साथ घर की ओर चलना आरंभ किया, और तब हम उस पुरानी फोर्ड कार तक चलकर गए, और सो इस तरह से चंद्रमा चमक रहा था, आप जानते हैं। मैंने उसकी ओर देखा और वो सुंदर थी। लड़के, मैंने उसकी ओर देखा और मैंने सोचा प्रभु, मैं किस तरह से उसे पाना चाहता हूँ, लेकिन लगता है कि मैं उसे नहीं पा सकता हूँ। और सो हम कुछ दूर तक चलकर गए, आप जानते हैं, और मैंने उसकी ओर फिर से देखा। मैंने कहा आज रात तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? उसने कहा ओह मैं ठीक हूँ। और हमने पुरानी फोर्ड कार को रोका और हम बाहर निकलने लगे, आप जानते हैं, किनारे की ओर, और उसके घर तक चलकर गए, और मैं उसके साथ दरवाजे तक चलकर साथ जा रहा था। मैंने सोचा आप जानते हैं, उसे शायद वो पत्र नहीं मिला है, इसलिए मुझे बस इस बात को भूल जाना चाहिए, मुझे किसी भी तरह एक और सप्ताह का अनुग्रह मिल जाएगा, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। उसने कहा बिली, मैंने कहा हाँ। उसने कहा मुझे तुम्हारा पत्र मिला। ओह प्रभु, मैंने कहा तुम्हें मिल गया? उसने कहा हम्म, अच्छा। वह बस चलती रही, उसने बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोला। मैंने सोचा स्त्री मुझे कुछ तो बताओ, मुझे भगा दो, या तो यह बताओ कि तुम इसके विषय में क्या सोचती हो। और मैंने कहा क्या तुमने उसे पढ़ा? उसने कहा हम्म। ओह प्रभु, आप जानते हैं कि कैसे एक स्त्री आपको असमंजस या दुविधा में रख सकती है। ओह, मेरा मतलब बस उस प्रकार से नहीं था जैसा कि आप समझ रहे हो, समझे? लेकिन जो भी हो, आप जानते हैं, मैंने सोचा तुम क्यों कुछ भी नहीं कहती हो, देखो। और मैं चलता रहा। मैंने कहा क्या तुमने उसे पूरा पढ़ा? और वो हम्म। सो हम लगभग दरवाजे तक पहुंच गए, और मैंने सोचा लड़के मुझे उस बरामदे तक नहीं ले जाना, क्योंकि हो सकता है मैं वहां से जल्दी दौड़ नहीं पाऊं, सो तुम मुझे अभी बताओ। और इसलिए मैं प्रतीक्षा करता रहा। और उसने कहा बिल्ली, मुझे ऐसा करना अच्छा लगेगा। उसने कहा मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, परमेश्वर अब उसके प्राण को आशीष दे, वो महिमा में है। उसने कहा मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, कहा मैं सोचती हूँ कि हमें अपने माता पिता को बता देना चाहिए, माता पिता को इस विषय में बता देना चाहिए, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते हो? और मैंने कहा प्रिय सुनना, आओ हम एक ऐसे प्रस्ताव से आरंभ करें जिसे हम आधा आधा बांट लेंगे। मैंने कहा तुम्हारे पिता को मैं बताऊंगा, यदि तुम अपनी माँ को बताओ। आरंभ करने के लिए सबसे बुरे भाग को उसी के ऊपर लाद दिया। उसने कहा ठीक है, पर तुम पहले पिताजी को बताओगे। मैंने कहा तो ठीक है, मैं उन्हें रविवार की रात को बता दूंगा। और अतः रविवार की रात आ गई, मैं उसको कलीसिया से घर लेकर आया, और मैं वह मेरी ओर देखती रही, और मैं देख रहा था, और 9:30 बजे थे, यह मेरे जाने का समय हो गया था। सो चार्ली अपनी मेज पर बैठा हुआ था, टाइपिंग कर रहा था, और श्रीमती ब्रम्बेक एक कोने में बैठी हुई थी, किसी प्रकार की बुनाई कर रही थी, आप जानते हैं, या वह छोटे छोटे बुनाई के घेरे जो आप चीजों पर लगाते हैं, आप जानते होंगे, मुझे नहीं पता कि आप इसे क्या कहते हैं। और सो वो कुछ उसी प्रकार की चीज से काम कर रही थी, और होप मेरी ओर देखती रही, और उसने मेरी ओर देखकर बोहे चढ़ाई, आप जानते हैं, अपने पिता की ओर इशारा कर रही थी। और मैं ओह प्रभु, मैंने सोचा क्या होगा यदि वे कहते हैं नहीं, इसलिए मैं दरवाजे की ओर बाहर जाने लगा। मैंने कहा तो मैं समझता हूँ कि मेरा जाना ही बेहतर होगा, और मैं दरवाजे की ओर चलकर गया, और उसने मेरे साथ दरवाजे की ओर चलना आरंभ किया। वो हमेशा दरवाजे तक आती थी, और वह मुझे शुभ रात्रि कहती थी, इसलिए मैंने दरवाजे की ओर चलना आरंभ किया। और उसने कहा क्या तुम उन्हें नहीं बताओगे? और मैंने कहा हम्म। मैंने कहा मैं निश्चित रूप से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि मैं इस बात को कैसे करूं, और उसने कहा मैं बस वापस चली जाऊंगी और तुम उन्हें बाहर बुला लेना। सो वह वापस चली गई और मुझे वहीं खड़ा छोड़ दिया। और मैंने कहा चार्ली, वो पीछे घूमे और कहा हाँ बिल। मैंने कहा क्या मैं आपसे बस एक मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? उसने कहा जरूर। वह अपनी मेज पर से पीछे घूमे। श्रीमती ब्रम्बैक ने उनकी ओर देखा, होप की ओर देखा और मेरी ओर देखा। और मैंने कहा क्या आप यहाँ बाहर बरामदे में आ सकते हैं? और उन्होंने कहा हाँ मैं बाहर आता हूँ। सो वे बाहर बरामदे पर आ गए। मैंने कहा निश्चय ही ये बहुत ही सुंदर रात है, क्या नहीं है? और उन्होंने कहा हाँ ये सुंदर है। मैंने कहा निश्चय ही गर्मी रही है, निश्चित रूप से गर्मी है। उन्होंने मेरी ओर देखा। मैंने कहा मैं बहुत अधिक परिश्रम करता हूँ। मैंने कहा आप जानते हैं यहाँ तक कि मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। उन्होंने कहा बिल तुम मुझसे रिश्ता जोड़ सकते हो। ओह प्रभु तुम मुझसे रिश्ता जोड़ सकते हो। मैंने सोचा ओह ये अच्छा रहेगा। मैंने कहा चार्ली क्या आपका मतलब सचमुच में यही है? उसने कहा मैंने कहा चार्ली देखो मैं जानता हूँ कि वह आपकी बेटी है और आपके पास पैसा है। और वो आगे आए और मुझे मेरे हाथ से पकड़ लिया। उन्होंने कहा बिल सुनो मनुष्य जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। उन्होंने कहा मैंने कहा चार्ली मैं बस एक घंटे में 20 सेंट कमाता हूँ लेकिन मैं उससे प्रेम करता हूँ और वह मुझसे प्रेम करती है। और चार्ली मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तब तक काम करूँगा जब तक उसकी जीविका के लिए मेरे हाथ कठोर न हो जाएं। मैं बस उसके प्रति जितना सच्चा बना रह सकता हूँ उतना सच्चा बना रहूँगा। उसने कहा बिल मैं यह विश्वास करता हूँ। उसने कहा सुनो बिल मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। कहा तुम जानते हो खुश रहने के लिए कुल मिलाकर पैसों की आवश्यकता नहीं होती है। कहा बस उसके प्रति अच्छे बने रहना और मैं जानता हूँ कि तुम बने रहोगे। मैंने कहा चार्ली धन्यवाद मैं निश्चय ही वैसा करूँगा। उसके बाद ये उसकी बारी थी कि माँ को बताए। मैं यह नहीं जानता हूँ कि उसने यह कैसे किया लेकिन हमारा विवाह हो गया। अतः जब हमारा विवाह हो गया हमारे पास कुछ भी नहीं था, घर को चलाने के लिए कुछ नहीं था। मैं सोचता हूँ कि हमारे पास $2 या $3 थे तो हमने एक घर किराए पर ले लिया। इसका एक महीने का किराया हमको $4 देना था। यह एक छोटा सा 2 कमरे का स्थान था और किसी ने हमें एक पुराना फोल्डिंग पलंग दिया। मैं सोचता हूँ कि क्या कभी किसी ने एक पुराना फोल्डिंग पलंग देखा है। और उन्होंने हमें ये दिया और मैं सीयर्स और रॉबर्ट्स की दुकान पर गया और एक छोटी सी मेज जिसके साथ में 4 कुर्सियाँ थी खरीद कर लाया और उसमें पेंट नहीं हुआ था आप जानते हैं। और हम उस चीज को समय पर ले आए। और सो फिर मैं श्रीमान वेबर के पास गया जो कि कबाड़ चीजों के विक्रेता थे और एक खाना पकाने वाला स्टोव खरीदा। मैंने उसके लिए 75 सेंट दिए और उसमें जाली लगाने के लिए $1 और कुछ पैसे दिए। हमने घरेलू सामान को सुव्यवस्थित किया। मुझे याद है कि जब मैंने कुर्सियों पर पेंटिंग की थी तो मैंने उन पर एक हरे रंग की पेंट की थी। और ओह वैसे भी हम खुश थे, हमें एक दूसरे का साथ था, इसलिए यही सब कुछ था जिसकी आवश्यकता थी। और परमेश्वर उसकी दया और उसकी भलाइयों के द्वारा हम सबसे आनंदित पति पत्नी थे जो धरती पर हो सकते थे। मैंने यह पाया कि खुशी इस बात में नहीं होती है कि आपके पास कितनी सांसारिक वस्तुएं हैं, लेकिन आप उस भाग से कितने संतुष्ट हैं जो आपको दिया गया है। और कुछ समय के बाद परमेश्वर नीचे आया और हमारे छोटे से घर को आशीषित किया। हमारे यहाँ एक छोटे से लड़के ने जन्म लिया था, उसका नाम बिली पॉल है। वो ठीक अभी यहाँ इस सभा में है। और उसके कुछ समय के बाद लगभग 11 महीने के बाद उसने हमें फिर से एक छोटी लड़की से आशीषित किया जिसका नाम शारोन रोज था। यह शब्द शारोन के गुलाब से लिया गया है। और मुझे याद है कि एक दिन मैंने अपने पैसों को बचाया था और मैं कुछ दिनों की छुट्टी को मनाने के लिए जा रहा था। मछली पकड़ने के लिए पौ झील नामक जगह पर जा रहा था और वापस आते समय और उस समय के दौरान मैं अपने परिवर्तित को छोड़ रहा था। मेरा परिवर्तित हुआ था और मैं मिशनरी बैप्टिस्ट कलीसिया में डॉक्टर रॉय डेविस के द्वारा नियुक्त किया गया था और मैं एक सेवक बन गया था और एक आराधनालय था जिसमें मैं जेफरसन विले में अभी प्रचार करता हूँ। और मैं एक छोटी सी कलीसिया में पास्टर का काम कर रहा था और मैं कोई पैसा नहीं। उस कलीसिया का मैं 17 वर्ष पास्टर रहा और एक पैसा भी नहीं लिया। मैं विश्वास नहीं करता था। उस कलीसिया में यहाँ तक प्रेम भेंट लेने की प्लेट भी नहीं थी, और जो दशमांश मुझे काम करने और इत्यादि के द्वारा मिलते थे, भवन के पीछे की ओर एक छोटा सा बक्सा रखा हुआ था जिस पर छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, जो कुछ तुमने इस छोटे में से छोटों के साथ में किया, तुमने मेरे साथ में किया। और तब उसी प्रकार से कलीसिया के लिए भुगतान किया गया था। हमने उसे चुकाने के लिए 10 वर्ष का कर्ज लिया था, लेकिन वह 2 वर्ष से भी कम समय में पूरा चुका दिया गया, और मैंने किसी भी प्रकार की कोई भी प्रेम भेंट कभी नहीं ली। और फिर ओह, मेरे पास कुछ डॉलर थे जिसको मैंने छुट्टियों के लिए बचा कर रखे थे। वह भी फाइन शर्ट फैक्ट्री में काम करती थी। वो एक प्यारी सी प्रिय लड़की थी, और उसकी कब्र आज शायद बर्फ से ढकी हुई है, लेकिन वह अभी भी मेरे हृदय में है। और मुझे याद है कि जब उसने मुझे इस झील पर मछली पकड़ने जाने के लिए पर्याप्त धन जुटाने में मदद करने के लिए बहुत मेहनत की थी, और जब मैं इस झील पर से वापस आ रहा था, तो मैंने देखा जब मैं मिशावाका और पश्चिमी बैंड इंडियाना में आने लगा, और मैंने कारों के पीछे ध्यान दिया जिसमें यह बोर्ड लगे हुए थे, लिखा था केवल यीशु। और मैंने सोचा यह विचित्र सी बात लगती है, केवल यीशु। और मैं उन बोर्ड पर ध्यान देने लगा, और वे हर कहीं लगे हुए थे, साइकिल पर, फोर्ड कैडिलिक कारों पर, और बहुत से स्थानों पर केवल यीशु। और मैंने उनमें से कुछ का पीछा किया, और वे एक बहुत बड़े कलीसिया पर आए, और मुझे पता चला कि वे पेंटिकॉस्टल हैं। मैंने पेंटिकॉस्टल के विषय में सुना था, लेकिन वे पवित्र शोर मचाने वालों का एक झुंड था, जो फर्श पर लेट जाते हैं और उनके मुंह से झाग निकलने लगते हैं, और यही सब कुछ था जो उन्होंने मुझे उनके विषय में बताया था। तो मैंने इससे कुछ लेना देना नहीं रखना चाहा, सो मैंने उन्हें वहाँ पर सब शोर शराबा करते हुए सुना, और मैंने सोचा, मैं सोचता हूँ कि मुझे बस अंदर जाकर देखना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी पुरानी फोर्ड कार को रोका और अंदर चलकर गया, और वे सारे गीत जिसे आपने अपने जीवन में कभी नहीं सुना होगा। और मुझे ये पता लगा कि वहाँ 2 बड़ी कलीसियाएं थी, उनमें से एक जेसी की पीए कहलाती थी, और दूसरी वाली डब्लू की पीए। आप में से बहुत से लोगों को याद होगा, वे पुराने, मैं सोचता हूँ कि वे दोनों एक हो गए हैं, अभी बुलाया जाता है, और उन्हें यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल कलीसिया कहकर बुलाया जाता है। तो मैंने उनके कुछ शिक्षकों को सुना, और वे वहाँ पर खड़े हुए थे। ओह, वे यीशु के विषय में सिखा रहे थे, और वो कितना महान था, और सारी बातें कितनी महान थी, और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में। मैंने सोचा वे किस विषय में बात कर रहे हैं, और कुछ समय के पश्चात कोई उठ खड़ा हुआ और अन्य जुबान में बोलने लगा, अच्छा, मैंने अपने जीवन में उस प्रकार की कोई चीज नहीं सुनी थी। और यहाँ पर कोई स्त्री बस उतनी जोर से भागती हुई आई जितनी जोर से वो भाग सकती थी। फिर वे सभी खड़े हो गए और भागना आरंभ कर दिया, और मैंने सोचा, अच्छा भाई, उनके पास निश्चित रूप से कलीसिया के शिष्टाचार नहीं है। चिल्ला रहे थे और चीख रहे थे, और ऐसे ही करना जारी था। मैंने सोचा ये क्या ही झुंड है, लेकिन आप जानते हैं उसके विषय में कुछ तो है। जितनी देर तक मैं वहाँ पर बैठा रहा, उतना ही मुझे अच्छा लगने लगा। कुछ ऐसी बात थी जो बहुत ही अच्छी प्रतीत हो रही थी, और मैंने उनको देखना आरंभ किया, और ऐसा चलता रहा। मैंने सोचा मैं उनके साथ बस कुछ समय तक और रुकूंगा, क्योंकि मैं दरवाजे के पास ही खड़ा था। यदि बस कुछ भी उतावलापन होता है, मैं दरवाजे से बाहर भाग जाऊंगा। मैं जानता हूं कि मेरी कार कहां पर खड़ी हुई है, बस उस मोड़ के किनारे पर खड़ी है। और मैंने उनमें से कुछ प्रचारकों को सुनना आरंभ किया, वे विद्वान और छात्र थे। क्यों, मैंने सोचा ये अच्छा है। तो रात के खाने का समय आया, और कहा हर एक जन खाने के लिए आ जाए, लेकिन मैंने सोचा एक मिनट रुकना, मेरे पास घर जाने के लिए $1.75 थे, और मैं बस यही सब कुछ मेरे पास पेट्रोल के लिए था, बस इतना ही पैसा था जो मुझे घर ले जाएगा। और मेरे पास मेरी पुरानी फोर्ड कार थी, यह एक बहुत अच्छी पुरानी फोर्ड कार थी, वो खराब अवस्था में नहीं थी, यह बस यहाँ जो है इसी के समान थी, केवल थोड़ी सी ज्यादा चल चुकी थी। और वह, मैं असल में विश्वास करता हूँ कि फोर्ड कार 30 मील प्रति घंटे से चलती है, लेकिन निसंदेह वह 15 इस ओर जाती है, और 15 इस ओर, आप समझे, आप उसको जोड़ दें, आपके पास में 30 होता है। और इसलिए ये मैंने सोचा, अच्छा, उस रात्रि मैंने सोचा कि मैं बाहर जाऊंगा, और उसके बाद मैं रात की सभा के लिए रुक गया था। और ओह, उसने कहा सभी प्रचारक, चाहे वे किसी भी संप्रदाय से क्यों न हो, मंच पर आ जाएं। अच्छा, वहाँ पर हम लगभग 200 लोग थे, मैं ऊपर गया और इसलिए उसने कहा अब हमारे पास आप सभी के प्रचार करने के लिए समय नहीं है। उसने कहा बस वहाँ चलकर जाएं और यह कहें कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। खैर ये मेरा समय आया, मैंने कहा विलियम ब्रैनम बैप्टिस्ट जेफरसनविले इंडियाना, मैं चला गया। मैंने बाकी के सभी को अपना परिचय देते हुए सुना, पेंटिकॉस्टल 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 डब्लू का पीए पीए जेसी पीए डब्लू पी, मैं चला गया। मैंने सोचा तो मेरा अनुमान है कि मैं भद्दा सा दिखने वाला बदक का बच्चा हूँ, तो मैं बैठ गया प्रतीक्षा कर रहा था। और उस दिन उनके पास वहाँ पर अच्छे युवा प्रचारक थे और उन्होंने प्रभावशाली ढंग से प्रचार किया। और फिर उन्होंने कहा जो व्यक्ति आज रात संदेश लाने जा रहा है वो है, मेरा विश्वास है कि उसे प्राचीन बुलाया गया। वे उनके सेवक बजाय उनको आदरणीय कहने के वे उनको प्राचीन कहते हैं। और वे एक बूढ़े अश्वेत व्यक्ति को वहाँ पर लेकर आए और उसने वह पुराने चलन के प्रचारकों का कोट पहन रखा था। मुझे नहीं लगता है कि आपने कभी ऐसे एक को देखा है, उसके पीछे एक लंबी सी कबूतर की तरह पूंछ होती है, आप जानते हैं उसके कॉलर मखमली होते हैं और उसके सिर के चारों ओर बस छोटे से सफेद बालों का एक किनारा था। बेचारा बूढ़ा व्यक्ति वह इस प्रकार से बाहर आया आप जानते हैं, और वो वहाँ पर खड़ा रहा और वह पीछे मुड़ा और जहाँ पर सब प्रचारक प्रचार कर रहे थे यीशु और उसके विषय में कि वह कितना महान था और इत्यादि, उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना मूल पाठ अय्यूब की पुस्तक से लिया, तू कहाँ पर था जब मैंने संसार की नींव रखी या जब भोर के तारे एक साथ गाते थे और परमेश्वर के पुत्र आनंद से चिल्लाते थे। और वह बेचारा बूढ़ा व्यक्ति, मैंने सोचा कि उन्होंने उनमें से किसी युवा व्यक्ति को वहाँ पर प्रचार करने के लिए नहीं रखा, ज्यादा वो जगह खचाखच भरी हुई थी और मैंने सोचा उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। अतः फिर इस बूढ़े व्यक्ति ने बजाय ये प्रचार करने की कि यहाँ धरती पर क्या हो रहा है, उसने यह प्रचार करना आरंभ किया कि स्वर्ग में हर समय क्या चल रहा था। तो उसने उसे वहाँ ऊपर आरंभ से लिया, समय के आरंभ से लिया और उसे वापस दूसरे आगमन तक समतल मेघधनुष में नीचे लेकर आया। क्यों? मैंने अपने जीवन में उस प्रकार का प्रचार कभी नहीं सुना था। लगभग उसी समय पर आत्मा उस पर उतरा, उसने लगभग इतनी ऊंची छलांग लगाई और अपनी इड़ियों को आपस में टकराया, अपने कंधों को पीछे की ओर किया और मंच पर से पैरों से आवाज करता हुआ चला गया। कहा आपके पास यहाँ पर मेरे प्रचार करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, और जितनी जगह यहाँ मेरे पास है उससे ज्यादा उसके पास जगह थी। मैंने सोचा यदि यह बात एक बूढ़े व्यक्ति को इस तरह से व्यवहार करने को लगाती है, यदि यह मुझ पर आता है तो ये क्या करेगा। मैंने सोचा शायद मुझे उसमें से कुछ की आवश्यकता है। क्यों? वो वहाँ मंच पर सामने आया, मैंने उस बूढ़े व्यक्ति के प्रति बहुत शर्मिंदा महसूस किया, लेकिन जब वो चला गया मैं अपने ऊपर शर्मिंदा महसूस कर रहा था और मैंने उसे वहाँ पर से जाते हुए देखा। उस रात मैं बाहर गया और मैंने सोचा अब अगली सुबह किसी को भी यह नहीं जानने दूंगा कि मैं कौन हूँ। सो मैं गया और उस रात मैंने अपनी पैंट को इस्त्री की, मैंने लिया, मैं मक्के के खेत में सोने के लिए चला गया और मैंने वहाँ जाकर और मेरे लिए कुछ बासी मसाला लपेटी हुई डबल रोटी खाने के लिए खरीद लाया। मैंने उन्हें पूरा एक साथ 5 सेंट में खरीदा। वहाँ पर पानी का जल कुंड था, मैंने थोड़ा सा पानी लिया तो मैं जानता था कि उससे मुझे कुछ समय के लिए भूख नहीं लगेगी, तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा पानी लिया और उसे पिया और जाकर और मेरी मसाला लपेटी हुई डबल रोटी खाई और वापस आया और एक बार और पानी पिया। मक्के के खेत में गया, कार की 2 सीटों को उठाया और पतले कपड़े की पैंट को वहाँ पर रखा, उन्हें सीट में दबा दिया। और उस रात मैंने लगभग पूरी रात प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु यह मैं किस चीज में आ गया हूँ, मैंने अपने जीवन में इस प्रकार के धार्मिक लोगों को कभी नहीं देखा, और मैंने कहा यह जानने में मेरी सहायता करें कि यह सब क्या है। और अगली सुबह मैं वहाँ पर गया, हमें नाश्ते के लिए आमंत्रित किया गया था, हालांकि मैं आकर उनके साथ नहीं खाता क्योंकि मेरे पास प्रेम दान में डालने के लिए कुछ नहीं था और मैं बस वापस चला गया। और अगली सुबह जब मैं अंदर गया, क्यों, मैंने मेरी कुछ मसाला लपेटी हुई डबल रोटी में से खाया और बैठ गया और वे माइक पर आए और मैंने पहले कभी माइक नहीं देखा था और मैं उस चीज से डरा हुआ था। अतः वे और उसमें से एक पतली सी रस्सी ऊपर से लटक रही थी और वह नीचे लटका हुआ था, ये एक प्रकार का लटकाने वाला माइक था। और उसने कहा पिछली रात मंच पर एक बैप्टिस्ट जो एक युवा प्रचारक था। मैंने सोचा ओह अब मेरे लिए अच्छा है कि मैं भाग जाऊं और उसने कहा वह मंच पर आने वाला सबसे युवा प्रचारक था, उसका नाम ब्रेनम था। क्या कोई उसके विषय में जानता है कि वो कहाँ पर है? उससे कहिए कि यहाँ आए, हम चाहते हैं कि वो इस सुबह का संदेश दे। ओह प्रभु, मैंने एक छोटी सी टी शर्ट पहन रखी थी और पतले कपड़े वाली पैंट पहन रखी थी, आप जानते हैं, और हम बैप्टिस्ट यह मानते थे कि आपको मंच पर आने के लिए सूट पहनना है, आप जानते होंगे। सो और मैं बस बहुत ही शांत बैठा रहा, और उस समय के दौरान उन्होंने इसे उनके अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को पूर्व में आयोजित किया था, क्योंकि अश्वेत लोग वहाँ पर नहीं आ सकते थे। यदि वह सभा पश्चिम में आयोजित की जाती थी, उनके पास वहाँ पर अश्वेत लोग थे, और मैं एक पश्चिमी प्रांत का था, मुझे अभी भी अभिमान था, आप समझे। सोचा कि मैं किसी और से थोड़ा सा बेहतर हूँ, और ऐसा हुआ कि उस सुबह ठीक मेरे पास एक अश्वेत व्यक्ति बैठा हुआ था। सो मैं वहाँ पर बैठा हुआ था और उसकी ओर देख रहा था। मैंने सोचा, खैर वो एक भाई है, और उसने कहा, क्या किसी को पता है कि विलियम ब्रेनम कहाँ पर है? मैं इस प्रकार से अपनी सीट में नीचे झुक गया। सो उसने कहा, उसने दूसरी बार इसकी घोषणा की, कहा क्या वहाँ कोई बाहर? उसने छोटे से माइक को अंदर खींचा, ये जानता है कि विलियम ब्रेनम कहाँ पर हैं? उसे ये बताओ कि हम चाहते हैं कि वो इस सुबह के संदेश को लेकर आए, वो पश्चिमी इंडियाना से आया एक बैप्टिस्ट प्रचारक है। मैं बस बहुत ही शांत बैठा रहा, और आप जानते हैं कि मैं नीचे झुक गया। वैसे भी कोई भी मुझे नहीं जानता था। उस अश्वेत भाई ने मेरी ओर देखा, कहा क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ पर है? मैंने सोचा मुझे या तो झूठ बोलना है या कुछ तो करना है, इसलिए मैंने कहा यहाँ पर सुनना। उसने कहा हाँ श्रीमान। मैंने कहा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं ही वो व्यक्ति हूँ। उसने कहा अच्छा, वहाँ ऊपर चले जाओ। और मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ, समझे। मैंने कहा मैंने यह छोटी सी पतले कपड़े वाली पैंट और यह टी शर्ट पहन रखी है। मैंने कहा मैं वहाँ ऊपर नहीं जा सकता हूँ। उसने कहा वे लोग इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि आप किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, वहाँ ऊपर चले जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं। मैंने कहा शांत रहें, अभी कुछ भी ना कहें। और वे एक मिनट के बाद माइक में वापस आए, कहा क्या कोई जानता है कि विलियम ब्रेनम कहाँ पर है? अश्वेत व्यक्ति ने कहा यहाँ है वो, यहाँ है वो, यहाँ है वो। ओह प्रभु, आप जानते हैं, वहाँ पर मैं उस छोटी सी टी शर्ट के साथ उठा और यहाँ पर मैं। उसने कहा श्रीमान ब्रेनम ऊपर आ जाइए, हम चाहते हैं कि आप संदेश लेकर आएं। ओह प्रभु, उन सभी प्रचारकों के सामने, उन सभी लोगों के सामने और ऊपर की ओर धीरे से चला गया। आप जानते हैं मेरा चेहरा लाल था और मेरे कान जल रहे थे, और मैंने पतले कपड़े की पैंट को ऊपर किया और टी शर्ट को ठीक किया। एक प्रचारक, बैप्टिस्ट प्रचारक माइक की ओर जा रहा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, आप समझे। और मैं वहाँ पर खड़ा था। मैंने कहा अच्छा, मैं इसके विषय में नहीं जानता हूँ। मैं हड़बड़ा रहा था और बहुत ही घबराया हुआ था, आप समझते होंगे। और मैं लूका 16 की ओर गया और मैंने सोचा अच्छा अब, और मैं उस विषय को लिया, और उसने अधोलोक में अपनी आँखें उठाई और वह चिल्लाया, और मैंने प्रचार करना आरम्भ किया, आप जानते हैं। और मैंने प्रचार करते करते और थोड़ा अच्छा महसूस करने लगा, और मैंने कहा धनी व्यक्ति अधोलोक में था और वह रोया। वे तीन छोटे से शब्द जैसे कि मैंने इस प्रकार से बहुत से संदेश में लिया है, तुम यह विश्वास करते हो? और चट्टान से बोलो, आपने मुझे उस पर प्रचार करते हुए सुना है, और मैंने यह लिया था। और फिर वो रोया, और मैंने कहा वहाँ पर कोई बच्चे नहीं है, निश्चित रूप से अधोलोक में नहीं है। फिर वो रोया। मैंने कहा वहाँ पर कोई फूल नहीं है, फिर वो रोया। वहाँ पर कोई परमेश्वर नहीं है, फिर वो रोया। वहाँ कोई मसीह नहीं है, फिर वो रोया। उसके बाद मैं रोया, किसी चीज ने मुझे नियंत्रण में ले लिया। ओह ओह प्रभु, उसके बाद मैं नहीं जानता कि क्या हुआ। जब मैं एक प्रकार से अपने आपे में आया, मैं बाहर की ओर खड़ा हुआ था। वे लोग चीख रहे थे और चिल्ला रहे थे और रो रहे थे, और मैं, हमारा बहुत अच्छा समय रहा था। जब मैं बाहर आया तो वहाँ पर व्यक्ति चलकर मेरे पास आया जिसने एक बहुत बड़ी टेक्सास की टोपी, बड़े बड़े जूते पहन रखे थे। चलकर आया, कहा मैं फलाना और फलाना प्राचीन हूँ। वह प्रचारक था, घुड़सवार चरवाहे की तरह बूट पहने हुए था, घुड़सवार चरवाहे के कपड़े पहने हुए था। मैंने सोचा तो ठीक है, मेरी पतले कपड़े वाली पैंट तब इतनी खराब नहीं है। कहा मैं चाहता हूँ कि आप टेक्सास में आएं और मेरे लिए एक बेदारी के कार्यक्रम को करें। श्रीमान, मुझे इसे लिख लेने दें। और मैंने उस बात को इस प्रकार से लिख लिया। यहाँ पर एक व्यक्ति आया जिसने एक प्रकार से छोटी सी गोल्फ पैंट पहन रखी थी, जहाँ पर वे गोल्फ खेला करते थे। आप जानते हैं, छोटी सी ऊपर से ढीली ढाली पैंट पहन रखी थी। उसने कहा, मैं मियामी से फलाना और फलाना प्राचीन हूँ। मैं चाहता हूँ प्रभु, हो सकता है कपड़े पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने उसकी ओर देखा और मैंने सोचा, तो ठीक है। इसलिए मैंने उन चीजों को उठा लिया और मैं घर चला गया। मुझसे पत्नी मिली, उसने कहा, बिली, आपको किस बात के लिए इतनी खुशी हो रही है? मैंने कहा, ओह, मेरी मुलाकात सबसे बेहतरीन लोगों से हुई है। मेरे प्रभु, ये सबसे अच्छे लोग हैं जिन्हें तुमने कभी देखा होगा। वे लोग अपने धर्म के प्रति लज्जित नहीं होते हैं। और ओह, मैंने उसे उनके विषय में सब कुछ बताया और मैंने कहा, और यहाँ पर देखो प्रिय, कितने सारे आमंत्रण मिले हैं उन लोगों के। उसने कहा, वे पवित्र शोर मचाने वाले नहीं हैं क्या? वे हैं? मैंने कहा, मैं नहीं जानता कि वे किस प्रकार के शोर शराबा करने वाले हैं, लेकिन उनके पास कुछ तो है जिसकी मुझे आवश्यकता थी, समझे? मैंने कहा, यही एक चीज है जिस पर मुझे यकीन है। मैंने कहा, मैंने एक 90 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति को फिर से जवान होते हुए देखा है। मैंने कहा, मैंने अपने जीवन में ऐसा प्रचार कभी नहीं सुना है। क्यों? मैंने उस प्रकार का बैप्टिस्ट प्रचारक अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। मैंने कहा, वे तब तक प्रचार करते हैं जब तक कि उनकी सांस फूल नहीं जाती और वे अपने घुटनों को फर्श पर नहीं टिका लेते हैं, वापस आकर अपनी सांस को फिर से पकड़ते हैं। तुम उन्हें 2 ब्लॉक दूर से प्रचार करते हुए सुन सकती हो। और मैंने कहा, मैंने ऐसा अपने जीवन में कभी नहीं सुना है। और मैंने कहा, वे एक अन्य जुबान में बोलते हैं और दूसरा व्यक्ति यह बताता है कि वह किस विषय में बोल रहा है। ऐसा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना है। मैंने कहा, क्या तुम मेरे साथ जाओगी? उसने कहा, प्रिय, जब मैंने तुमसे विवाह किया है, मैं तुम्हारे साथ तब तक बनी रहूंगी जब तक मृत्यु हमें अलग नहीं कर देती है। उसने कहा, मैं जाऊंगी। उसने कहा, अब हम लोगों को बताएंगे। और मैंने कहा, अच्छा, तुम अपनी माँ को बताओ और मैं अपनी माँ को बताता हूँ। तो मैंने जाकर और माँ को बता दिया। माँ ने कहा, अच्छा, जरूर बिली, जो भी प्रभु ने तुम्हें करने के लिए बुलाया है, जाकर उसे करो। और इसलिए श्रीमती ब्रह्मबैंक ने मुझे ऊपर आने के लिए कहा। मैं ऊपर गया। उसने कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और मैंने कहा, ओह श्रीमती ब्रह्मबैंक, मैंने कहा, आप सब ने उस प्रकार के लोगों को कभी नहीं देखा होगा। उसने कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैंने कहा, हाँ महोदया। मैंने कहा, मुझे क्षमा करें। और उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि वे पवित्र शोर शराबा करने वालों का एक झुंड है? मैंने कहा, नहीं महोदया, मैं यह नहीं जानता था। मैंने कहा, वे निश्चय ही अच्छे लोग हैं। उसने कहा, वही विचार, क्या तुम यह सोचते हो कि मेरी बेटी को उस तरह की चीज के बीच में घसीट कर ले जाओगे? कहा, मूर्खतापूर्व, यह कुछ भी नहीं बल्कि कूड़ा है जो कि दूसरी कलीसियाओं ने बाहर फेंक दिया है। उसने कहा, बिल्कुल, तुम उस प्रकार से मेरी बेटी को बाहर नहीं ले जाओगे। और मैंने कहा, लेकिन आप जानती हैं श्रीमती ब्रह्मबैंक, मेरे हृदय के अंदर मैं ये महसूस करता हूँ कि प्रभु मुझसे चाहता है कि मैं उन लोगों के साथ जाऊँ। उसने कहा, तुम वापस कलीसिया जाओ जब तक कि वे तुम्हारे लिए एक पास्टर के रहने के स्थान को बनवाने के लिए योग्य हो सकें और एक ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार करें जिसमें कुछ समझ होती है। कहा, तुम मेरी बेटी को वहाँ पर नहीं ले जाओगे? मैंने कहा, हाँ महोदया। मैं पीछे मुड़ा और बाहर चला गया और होप ने रोना आरंभ कर दिया। वो बाहर आई। उसने कहा, बिली, माँ चाहे कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ बनी रहूंगी। उसके हृदय को आशीष मिले। और मैंने कहा, ओह, ये अच्छी बात है प्रिय। और मैंने बस इसे छोड़ दिया। वह अपनी बेटी को उस प्रकार के लोगों के साथ नहीं जाने देगी क्योंकि वह कूड़े के अलावा कुछ नहीं था। और इसलिए मैंने बस एक प्रकार से इसे छोड़ दिया। यह मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती की थी, सबसे बड़ी गलतियों में से एक। कुछ समय के पश्चात, कुछ वर्षों के बाद बच्चे आए और एक दिन हम 1937 में एक बाढ़ आई, वहाँ एक बाढ़ आई और हमारे, मैं उस समय गश्त पर था और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि लोगों को बाढ़ में से बाहर निकालूं। घर टूट रहे थे और मेरी अपनी पत्नी बीमार पड़ गई और वह बहुत ही निमोनिया से बीमार थी और वे उसे बाहर ले आए। नियमित अस्पताल इतना अधिक भरा हुआ था कि हम उसे वहाँ पर रख नहीं सके, इसलिए हम उसे बाहर उस सरकारी में ले गए जहाँ उनके पास में एक कमरा था। और फिर उन्होंने मुझे वापस बुलाया और मैं हमेशा ही नदी पर रहता था और नाव चलाने वाला व्यक्ति था, इसलिए मैं लोगों को बाढ़ से बचाने का यत्न कर रहा था। और फिर मैंने एक, उन्होंने मुझे बुलाया, कहा वहाँ चेस्टनट स्ट्रीट पर एक घर है जो कि बस टूटने वाला है, वहाँ एक माँ और कुछ बच्चों का झुंड वहाँ अंदर है। कहा यदि आप सोचते हैं कि आपकी नाव, आपकी मोटर बोट वहाँ उन तक पहुँच सकती है, मैंने कहा अच्छा, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। और मैं उन लहरों से लड़ रहा था, पानी का बांध टूट गया था और ओह मेरे प्रभु, वह बस शहर डूब रहा था। और मैं इसे करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा रहा था जितनी मैं लगा सकता था, और अंत में मैं गलियों में से होते हुए और स्थानों में से होकर गया। और मैं वहाँ उस स्थान के नजदीक पहुँचा जहाँ पर पुराना बांध था, पानी उसमें से होकर बह रहा था, और मैंने किसी को चिल्लाते सुना। और बाहर बरामदे में मैंने एक माँ को खड़े हुए देखा, और वहाँ उसके अंदर से वे बड़ी बड़ी लहरें होकर जा रही थी। तो मैं इस ओर आ गया जितनी दूर तक मैं जा सकता था, और पानी की धारा तक पहुँचा, और वापस आकर और उस तरफ आ गया। मैंने अपनी नाव को तब उस समय पर रोक दिया था ताकि मैं उसको खम्भे से बांध सकूं, चौखट से, दरवाजे के चौखट से या गलियारे के खम्भे से बांध सकूं। और मैं भागकर अंदर गया और माँ को पकड़ लिया और उसे अंदर लाया और दो या तीन बच्चों को भी लाया, और मैंने अपनी नाव को खोल दिया और उसे वापस लेकर गया। वह नीचे से होकर बाहर आया और उसे किनारे पर लेकर आया। वह शहर से 1.5 मील दूरी पर था, यहाँ तक कि मैं उसे किनारे पर लेकर आ गया। और जब मैं उसे वहाँ पर लेकर आया, वो बेहोश हो चुकी थी और उसने आरंभ किया, उसने चिल्लाना आरंभ किया था, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। अच्छा, मैंने सोचा कि उसका यह मतलब था उसने बच्ची को घर पर ही छोड़ दिया। ओ प्रभु, मैं फिर से वापस गया जब वे उस माँ का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे थे, और मैंने ये पता लगाया कि ऐसा था या वो यह जानने का यत्न कर रही थी कि उसकी बच्ची कहाँ पर है। वहाँ 3 वर्ष का एक छोटा लड़का था, और मैंने सोचा कि उसका मतलब एक दूध पीती बच्ची से था या ऐसा ही कुछ तो और था। और इसलिए मैं वापस गया और वहाँ पर पहुँचा, और जब मैंने उस नाव को लिया और अंदर गया, और मैंने किसी बच्ची को नहीं पाया, और गलियारा टूट चुका था और घर अंदर चला गया था। और मैं बहुत ही जल्दी भागा और झपट कर उस टुकड़े को वहाँ उठा लिया जो कि मेरी नाव को बहा रहा था, नाव में चढ़ गया और उसे खींचा और उसे ढीला कर दिया। और ये तब मुझे मुख्य नदी के बहाव में लेकर गया, और तब लगभग रात के 11:30 बजे थे, और बस ओलों के समान बारिश और बर्फ पड़ रही थी। और मैंने नाव को चालू करने की रस्सी को पकड़ा और मैंने नाव को खींचने की कोशिश की, और ये चालू नहीं हुई। और मैंने कोशिश की और ये चालू नहीं हो रही थी, और मैंने फिर से कोशिश की। उस तेज धारा की ओर आगे बढ़ती जा रही थी, मेरे ठीक नीचे एक गिरता हुआ झरना था, और बहुत ही मैं जोरों से कोशिश कर रहा था। और मैंने सोचा, ओह प्रभु, यहाँ पर मेरा अंत है, ऐसा ही है। और मैंने बहुत ही कोशिश की, और मैंने कहा, प्रभु मुझे कृपया इस प्रकार की मौत न मरने देना। और मैं रस्सी खींचता रहा और मैं खींचता रहा, और ये बात मेरे पास वापस आई, उस कूड़े के झुंड के विषय में, क्या जिनके पास तुम नहीं गए, समझे। मैंने नाव के ऊपर वापस अपना हाथ रखा और मैंने कहा, परमेश्वर मुझ पर दया करें, मुझे अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह छोड़कर मत जाने दो, और वे वहाँ पर बीमार हैं, कृपया करें। और मैं बस उसको इस प्रकार से खींचता रहा, और वो चालू नहीं हो रही थी, और मुझे वहाँ नीचे पानी के गिरने की आवाज आ रही थी, क्योंकि मैं बस कुछ ही मिनटों में और ओह प्रभु सब समाप्त हो जाएगा। और मैंने कहा, प्रभु यदि आप मुझे क्षमा कर देंगे, मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कुछ भी करूंगा। मैंने उस नाव में घुटने टेक दिए, और बर्फीली बारिश मेरे चेहरे पर गिर रही थी। मैंने कहा, मैं वो सब कुछ करूंगा जो आप मुझसे चाहते हैं कि मैं करूं। और मैंने फिर से खींचा और ये चालू हो गई, और मैं उसे जितनी जोर से चला सकता था मैंने चलाया, और आखिरकार किनारे पर पहुंच गया। और मैं ट्रक, अर्थात गश्त लगाने वाले ट्रक को ढूंढने के लिए वापस गया। और मैंने सोचा, उनमें से कुछ लोग जो वहाँ पर थे, कहते हैं सरकारी अस्पताल अभी अभी डूब गया है, मेरी पत्नी और बच्ची वहाँ पर अंदर थे, दोनों बच्चे। और जितनी जल्दी मुझसे हो सकता था, मैं सरकारी अस्पताल की ओर निकला, और वहाँ पर उसके अंदर पानी लगभग 15 फुट गहरा था, और वहाँ पर एक मेजर था। और मैंने कहा, मेजर अस्पताल को क्या हुआ? कहा, अब चिंता मत करो, क्या तुम्हारा कोई अंदर है? मैंने कहा, हाँ, एक बीमार पत्नी और 2 बच्चे। उसने कहा, वे सभी बाहर निकाले गए हैं। कहा, वे एक मालवाहक गाड़ी में हैं, और वे चार्ल्स टाउन की ओर जा रहे हैं। मैं भागा, अपनी नाव में गया, और मतलब अपनी कार की ओर गया, और उसके पीछे नाव रखी हुई थी, और भागकर वहाँ पर गया, और फिर नीचे की ओर वो नदी लगभग 2.5 या 3 मील चौड़ी हो गई थी और सारी रात मैं कोशिश करता रहा। उनमें से कुछ लोगों ने कहा वो बोगी, मालगाड़ी की बोगी, पुल पर पटरियों से बह गई। अच्छा, मैंने अपने आप को एक छोटे से टापू पर असहाय पाया। वहाँ पर 3 दिनों तक बैठा रहा। मेरे पास ये सोचने के लिए बहुत समय था कि वो कूड़ा था या नहीं, बस अंदर यही चल रहा था, मेरी पत्नी कहाँ पर है। अंत में जब मैं बाहर निकलकर उस पार पहुँचा तो कुछ ही दिनों में मुझे वो मिल गई। वह दूर कोलंबस इंडियाना तक पहुँच चुकी थी। वो एक बैप्टिस्ट सभागार में थी जहाँ पर उन्होंने एक अस्पताल के जैसे बना लिया था। सरकारी बिस्तरों पर बीमारों के लिए कमरे थे और जितनी जल्दी से हो सकता था मैं दौड़ कर गया। यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि वो कहाँ पर है, चिल्ला रहा था होप होप होप, और मैंने देखा और वो वहाँ एक चारपाई पर लेटी हुई थी और उसे टीबी लग गई थी। उसने अपना छोटा सा पतला हाथ उठाया और उसने कहा बिली, और मैं उसके पास भाग कर गया और मैंने कहा होप प्रिय। उसने कहा मैं बहुत ही खराब दिख रही हूँ, क्या नहीं दिख रही हूँ। मैंने कहा नहीं प्रिय, तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। लगभग 6 महीने तक हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी जो हमारे अंदर थी, जिससे कि हम उसके जीवन को बचा सकें, लेकिन उसकी हालत और भी बुरी होती चली गई। एक दिन मैं गश्त पर था और मैंने अपना रेडियो चालू रखा था और मैंने सोचा कि मैंने उनको रेडियो पर एक पुकार करते हुए सुना। उसने कहा यह विलियम ब्रैनहम के लिए है, अस्पताल में शीघ्र ही पहुंच जाएं, उनकी पत्नी की मृत्यु हो रही है। जितनी जल्दी हो सकता था मैं अस्पताल पहुंचा। मैं लाल बत्ती को जलाकर और सायरन को बजाते हुए चला गया और फिर मैं अस्पताल पहुंचा और मैंने गाड़ी को रोका, अंदर भाग कर गया। उस अस्पताल के अंदर से आ रहा था, मुझे मेरा छोटा सा मित्र दिखा जिसके साथ मैं मछली पकड़ा करता था। जब लड़के थे हम एक साथ जाया करते थे। उसका नाम सैम अडायर है, डॉक्टर सैम अडायर। यह वही है जिसे ज्यादा समय नहीं हुआ एक दर्शन आया था और उसे उसके दवा खाने के विषय में बताया था और उन्होंने कहा यदि किसी को दर्शन पर संदेह है तो बस उन्हें फोन करे कि आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि यह सही था या नहीं। और सो वह इस प्रकार से बाहर आए और उसके हाथ में उसकी टोपी थी। उसने मेरी ओर देखा और उसने तब रोना आरंभ किया और मैं उसके पास भाग कर गया, अपने हाथों को उसके चारों ओर डाल दिया। उसने अपने हाथों को मेरे चारों ओर डाल दिया, कहा बिली वो जा रही है। उसने कहा मैं क्षमा चाहता हूँ, जो कुछ मैं कर सकता था मैंने कर दिया है, मैंने विशेषज्ञ और हर एक की मदद ली है। मैंने कहा सैम निश्चय ही वो नहीं जा रही है। कहा हाँ वो जा रही है। और उसने कहा बिल तुम वहाँ अंदर मत जाओ। और मैंने कहा सैम मुझे अंदर जाना होगा। और उसने कहा ऐसा मत करो, कृपया ऐसा मत करो। मैंने कहा मुझे अंदर जाने दो। कहा मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, तुम यहाँ बाहर ही रुके रहो, मैं उसके अंतिम क्षणों में उसके साथ रहना चाहता हूँ। कहा वो बेहोश है। मैं कमरे में चलकर गया और नर्स वहाँ पर बैठी हुई थी और वो रो रही थी क्योंकि वो और होप स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। और तो मैंने वहाँ पर देखा और उसने रोना आरंभ कर दिया, अपने हाथों को ऊपर उठाया और उसने चलना आरंभ किया। और मैंने उसकी ओर देखा और उसे हिलाया, वो वहाँ थी। उसका वजन लगभग 120 पाउंड से लगभग 60 पाउंड हो गया था और मैंने उसे हिलाया। और यदि मैं 100 वर्ष तक जीवित रहता हूँ तो जो हुआ मैं उस बात को भुला नहीं पाऊंगा। उसने करवट बदली और उन बड़ी सी सुंदर आंखों ने मेरी ओर देखा, वो मुस्कुराई। उसने कहा बिली आपने मुझे क्यों वापस बुला लिया। मैंने कहा प्रिय मुझे अभी रेडियो प्रसारण से खबर मिली, मुझे बस काम करना था। हम पर डॉक्टर के बिल का सैकड़ों डॉलर का कर्जा हो गया था और उसे चुकाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था और मुझे बस काम करना होता था। और मैं उसे दिन में 2 या 3 बार देखने आता था और हर एक रात को। और फिर जबकि वह इस हालत में थी, मैंने कहा तुम्हारा इसका क्या मतलब है, तुम्हें वापस बुलाया। उसने कहा बिल आपने उसके विषय में प्रचार किया है, आपने उसके विषय में बात की है, लेकिन आपको नहीं पता कि ये क्या बात है। मैंने कहा तुम किस विषय में बात कर रही हो। उसने कहा स्वर्ग। उसने कहा देखो, उसने कहा मुझे दो लोगों के द्वारा जो कि पुरुष या स्त्री थे घर की ओर लेकर जा रहे थे, जिन्होंने सफेद वस्त्र पहन रखे थे और उसने कहा मैं आराम और शांति में थी। कहा बड़ी बड़ी सुंदर चिड़िया एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़कर जा रही थी। तो उसने कहा यह मत सोचना कि मैं अपने आपे में नहीं हूँ। उसने कहा बिली मैं आपको हमारी गलती बताने जा रही हूँ। उसने कहा बैठ जाओ। मैं नहीं बैठा, मैंने घुटने टेक दिए, उसके हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा आप जानते हो कि हमसे कहाँ पर गलती हुई? और मैंने कहा हाँ प्रिय मैं जानता हूँ। उसने कहा हमें माँ की बात कभी भी सुननी नहीं चाहिए थी, वे लोग सही थे। और मैंने कहा मैं ये बात जानता हूँ। उसने कहा मुझसे इस बात की प्रतिज्ञा करो कि आप उन लोगों के पास जाओगे। कहा क्योंकि वे सही हैं। और उसने कहा मेरे बच्चों का इसी तरह से पालन पोषण करो। और मैं उसने कहा मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। उसने कहा मैं मर रही हूँ, लेकिन कहा यह मुझे जाने से डर नहीं लग रहा है। कहा यह स्थान सुंदर है। उसने कहा केवल एक बात है, मुझे आपको छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा है बिल, और मैं जानती हूँ कि आपके पास पालने के लिए ये दो छोटे बच्चे हैं। उसने कहा मुझसे प्रतिज्ञा करो कि आप बिना विवाह के नहीं रहोगे और मेरे बच्चों को इधर उधर भटकने के लिए नहीं छोड़ोगे। एक 21 वर्षीय माँ के लिए यह समझदारी वाली बात थी। और मैंने कहा हो मैं इस बात की प्रतिज्ञा नहीं कर सकता हूँ। उसने कहा कृपया मुझसे प्रतिज्ञा करो। कहा एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। कहा आपको वो बंदूक याद है? मैं बस बंदूकों के विषय में पागल हूँ। और उसने कहा आप उस दिन उस बंदूक को खरीदना चाहते थे और आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे कि उसके अग्रिम भुगतान को कर सको। मैंने कहा हाँ। उसने कहा मैं आपके लिए उस बंदूक की अग्रिम किस्त को भरने के लिए अपना पैसा, मेरी छोटी छोटी पूंजी बचाते हुए आ रही हूँ। उसने कहा अब जब यह सब खत्म हो जाएगा और आप वापस घर जाना, उस चारपाई पर देखना या फोल्डिंग पलंग पर ऊपर रखे उस कागज के टुकड़े के नीचे, और आपको वहाँ पर पैसे मिलेंगे। उसने कहा मुझसे प्रतिज्ञा करो कि आप उस बंदूक को खरीदोगे। आप नहीं जानते कि मुझे कैसा महसूस हुआ जब मैंने डॉलर और 75 सेंट को वहाँ पर देखा, सेंट के रूप में थे, वहाँ पर रखे हुए थे। मैंने वह बंदूक खरीद ली। और उसने कहा आपको वो समय याद है जब आप शहर में जा रहे थे मेरे लिए एक जोड़ी लंबे मोजे खरीदने के लिए, और हम फोर्ड वैन की ओर जा रहे थे? मैंने कहा हाँ, मैं मछली पकड़ कर आया था। और उसने कहा हमें फोर्ड वैन जाना था, मुझे उस रात प्रचार करना था। और उसने कहा आप जानते हो कि मैंने आपको बताया था दो प्रकार के मोजे का कपड़ा होता है, एक को शिफॉन कहा जाता है और दूसरा वाला क्या होता है, रेयन। क्या ये सही है, रेयन और शिफॉन? अच्छा, ये जो कुछ भी है शिफॉन सबसे अच्छा है, क्या ये सही है? और उसने कहा अब आप मेरे लिए शिफॉन का लेकर आना, पूरी स्टाइल वाले। आप उस चीज को जानते हैं जिसके पीछे उस लंबे मोजे के ऊपरी हिस्से में छोटी सी चीज लगी होती है। और मैं महिलाओं के कपड़ों के विषय में कुछ भी नहीं जानता था, सो मैंने, और मैं सड़क पर कहते हुए जा रहा था शिफॉन 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 शिफॉन, सोचने की कोशिश करते हुए शिफॉन शिफॉन शिफॉन। किसी ने कहा हेलो बिली। मैंने कहा ओह हेलो हेलो, शिफॉन 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 शिफॉन। और मैं किनारे पर पहुंचा और मेरी मुलाकात श्रीमान स्पॉन से हुई। उन्होंने कहा हे बिली, क्या तुम जानते हो उस आखिरी घाट के किनारे पर अब मछली कांटे में फंस रही है? मैंने कहा यकीन से कह रहे हो, क्या यह सही है? हाँ। जब मैं उनको छोड़कर निकला मैंने सोचा वो क्या चीज थी, मैं उसे भूल गया। सो थेल्मा फोर्ड, एक लड़की जिसे मैं जानता था, वो 10 सेंट के बड़ी दुकान पर काम करती थी और मैं जानता था कि वे वहाँ पर स्त्रियों के लंबे मोजे बेचते थे, इसलिए मैं वहाँ पर गया। मैंने कहा हेलो थेल्मा। और उसने कहा हेलो बिली, आप कैसे हो, होप कैसी है? और मैंने कहा अच्छी है। मैंने कहा थेल्मा मुझे होप के लिए एक जोड़ी लंबे मोजे चाहिए। उसने कहा होप को मोजे नहीं चाहिए। मैंने कहा हाँ महोदया, उसको निश्चित रूप से चाहिए। कहा आपका मतलब लंबे मोजों से है? ओह निश्चय ही। मैंने कहा यही तो है, मैंने सोचा ओह, मैंने अपनी अज्ञानता प्रकट की। और उसने कहा उसे किस प्रकार के लंबे मोजे चाहिए? मैंने सोचा ओह, मैंने कहा तुम्हारे पास किस प्रकार के हैं? उसने कहा अच्छा, हमारे पास रेयन के हैं। मुझे फर्क नहीं पता था, रेयन शिफॉन सुनने में वे सभी एक से लगते हैं। मैंने कहा मुझे यही चाहिए। उसने कहा, मैंने कहा मुझे एक जोड़ी फुल स्टाइल वाले दे दो। और वह मैंने गलत मोजे ले लिए। ये क्या है, फुल फैशन वाले? फुल फैशन वाले। सो मैंने कहा मुझे उनमें से एक जोड़ी देना। और जब वह उन्हें मुझे देने के लिए गई, वे केवल 30 सेंट 20 सेंट या 30 सेंट के थे, लगभग आधे दाम के थे। अच्छा, मैंने कहा मुझे वे दो जोड़ी दे दीजिए, समझे, और मैं वापस घर गया और मैंने कहा, तुम जानती हो प्रिय, तुम स्त्रियां खरीदी करने के लिए सारे शहर में मोल भाव करती हो, आप जानते हैं कि आपको शेकी बगारना कैसा लगता है। और मैंने कहा, लेकिन यहाँ पर देखो, जिस दाम में तुम एक जोड़ी खरीदती हो, मैंने उसमें दो जोड़ी खरीदी है, देखा। मैंने कहा, ओह, यह मेरी व्यक्तिगत योग्यता है, देखो। मैंने कहा, तुम जानती हो थेलमा से मैंने इसे खरीदा है। मैंने कहा, हो सकता है कि उसने मुझे आधी कीमत पर ये चीजें दे दी हों। उसने कहा, क्या आप शिफॉन लेकर आए हो? मैंने कहा, हाँ महोदया, ये सब कुछ मुझे सुनने में एक सा लगता था, मैं यह नहीं जानता था कि उनमें कुछ फर्क है। और उसने मुझे बताया, उसने कहा, बिली, मुझे विचित्र सा लगा था जब वो फोर्ट वेन पहुंची, उसे एक और जोड़ी लंबे मोजे लेने थे। उसने कहा, मैं यह आपकी माँ को दे दूंगी, कहा, वे बुजुर्ग स्त्रियों के लिए हैं, कहा, मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैंने ऐसा किया। और मैंने कहा, ओ प्रिय, कोई बात नहीं। और उसने कहा, अब आप अकेले मत रहना। और उसने कहा, वो नहीं जानती थी कि उसके कुछ ही घंटों के बाद क्या होने जा रहा था। और मैंने उसके प्रिय हाथों को पकड़ रखा था जब परमेश्वर के दूत उसे उठा ले गए। मैं घर चला गया, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। उस रात को मैं वहाँ पर लेट गया और मैंने सुना, मैं सोचता हूँ कि यह एक छोटा सा चूहा था जो वहाँ उस छोटी सी जाली के अंदर था जहाँ पर हमने कुछ कागज रखे हुए थे। और मैंने अपने पैर से द्वार को बंद कर दिया और द्वार के पीछे उसका वस्त्र लटका हुआ था और वो उस मुर्दा घर में लेटी हुई थी। और तभी किसी ने मुझे बुलाया, कहा, बिली, और ये भाई फ्रैंक ब्रॉय थे, उन्होंने कहा, आपकी बच्ची की मृत्यु हो रही है। मैंने कहा, मेरी बच्ची? कहा, हाँ, शारोन रोज, कहा, डॉक्टर अब वहाँ है और बोले उसे ट्यूबरकुलर मेनिनजाइटिस या टीबी हो गई है, उसे यह बीमारी अपनी माँ के दूध पीने से हुई है, और कहा वो मर रही है। मैं कार में बैठकर वहाँ पर चला गया और वो वहाँ पर थी, वह छोटी सी प्यारी बच्ची, और वे उसे जल्दी से अस्पताल ले गए। मैं उनसे मिलने के लिए बाहर गया, सैम ने वहाँ पर आकर, और उसने कहा, बिल्ली, तुम उस कमरे में नहीं जाना, तुम्हें बिल्ली पॉल के विषय में सोचना होगा, कहा, वो मर रही है। मैंने कहा, डॉक्टर, मुझे अपनी बच्ची को देखना है। उसने कहा, नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते हो, कहा, बिल्ली, उसे मेनिनजाइटिस यानी टीबी हो गई है, और तुम यह बीमारी बिल्ली पॉल को पहुंचा दोगे। और जब तक वे बाहर नहीं आए, मैं इंतजार करता रहा। मैं वहाँ पर खड़े होकर उसको मरते हुए नहीं देख सकता था, और उसकी माँ वहाँ अंतिम संस्कार करने वाले की व्यवस्था में पड़ी हुई थी। मैं आपको बताता हूँ, एक अपराधी का मार्ग कठिन होता है। और मैं गया, द्वार के अंदर चला गया, और जब सैम बाहर निकल गया और नर्स बाहर निकल गई, मैं वहाँ तहखाने के अंदर चला गया। ये एक छोटा मोटा सा अस्पताल था, उसे एक एकांत स्थान पर रखा गया था, और मक्खियाँ उसकी छोटी सी आंखों पर थी, और उनके पास छोटा सा, जिसे हम मच्छर रोकने की चीज कहते हैं, या उसकी आंखों के ऊपर छोटी सी जाली लगी हुई थी, और वह और उसे थोड़ी सी ऐठन हो रही थी। उसके छोटे से मोटे पैर इस प्रकार से ऊपर और नीचे हो रहे थे, और उसके छोटे हाथ भी ऐठन के कारण। और मैंने उसकी ओर देखा और वो बस इतनी बड़ी थी कि प्यारी लगे, लगभग 8 महीने की थी, और उसकी माँ उसको वहाँ पर बाहर उस 3 कोने वाली इस चीज को पहनाकर बैठा देती थी। आप जानते हैं, आंगन में जब मैं वहाँ आता था और मैं हॉर्न को बजाता और वो गो 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 करके आवाज करती थी, आप समझ रहे होंगे, मेरे पास आने के लिए। और वहाँ पर मेरी प्रिय पड़ी हुई मर रही थी। मैंने वहाँ उसकी ओर देखा और मैंने कहा, शेरी, तुम डैडी को जानती हो? तुम डैडी को जानती हो, शेरी? और जब उसने देखा, वो इतने अधिक कष्ट से होकर गुजर रही थी, इतना तक कि उनमें से एक उसकी सुंदर छोटी सी नीली आंख तिरछी हो गई थी। ऐसा लगा जैसे कि उस बात से मेरा हृदय मेरे अंदर से फट जाएगा। मैंने घुटने टेके, मैंने कहा, प्रभु, मैंने क्या किया है? क्या मैंने सड़क के किनारे सुसमाचार का प्रचार नहीं किया है? मैंने वो हर एक चीज की है जो मैं करना जानता था, इसे मेरे विरुद्ध न कीजिए। मैंने उन लोगों को कभी भी कूड़ा नहीं कहा था, यह तो वो थी जिसने उन्हें कूड़ा कहा था। मैंने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ कि यह सब कुछ हुआ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी बच्ची को ना लें। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, ऐसा लगा कि एक काली जैसे कि एक चादर या एक कपड़ा नीचे आया। मैं जानता था कि उसने मेरी बात को अस्वीकार कर दिया है। अब यह मेरे जीवन का सबसे कठिन और सबसे विश्वासघाती समय था जब मैं खड़ा हुआ और उसकी ओर देखा और मैंने सोचा शैतान ने यह मेरे दिमाग में डाला, अच्छा तुम्हारा मतलब यह है कि तुमने बहुत कठिन परिश्रम करके प्रचार किया है और जिस प्रकार से तुमने जीवन व्यतीत किया है और अब जब तुम्हारी खुद की बच्ची का समय आता है वह तुमसे मुंह मोड़ देगा। और मैंने कहा यह सही है, यदि वो मेरी बच्ची को बचा नहीं सकता है तो मैं नहीं। मैं रुक गया, मैं बस यह नहीं जान पाया कि क्या करना है। और तब मैंने यह कहा, मैंने कहा प्रभु आपने उसको मुझे दिया और आपने उसे ले लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। यदि आप मुझे भी ले लें मैं फिर भी आपसे प्रेम करूंगा। और मैंने अपने हाथ को उसके ऊपर रखा, मैंने कहा प्रिय तुम्हें आशीष मिले, पापा तुम्हें बड़ा करना चाहते थे, मैं पूरे हृदय से तुम्हें बड़ा करना चाहता था और तुम्हें प्रभु से प्रेम करना सिखाना चाहता था। लेकिन प्रिय दूत तुम्हारे लिए आ रहे हैं, डैडी तुम्हारे छोटे से शरीर को लेकर और वहाँ इसे माँ के हाथों में रख देंगे, मैं तुम्हें उसके साथ दफना दूंगा। किसी दिन डैडी तुमसे मुलाकात करेंगे, तुम बस वहाँ ऊपर माँ के साथ इंतजार करना। जब उसकी माँ की मृत्यु हो रही थी उसने कहा अंतिम शब्द जो उसने कहा बिली प्रचार के कार्य क्षेत्र में बने रहना। मैंने कहा मैं, उसने कहा, मैंने कहा यदि मैं प्रचार के कार्य क्षेत्र में रहता हूँ जब वो आता है मैं बच्चों को लेकर और मिलूंगा, यदि मैं नहीं मिलता हूँ मैं तुम्हारे पास ही दफनाया जाऊंगा और तुम वहाँ उस बड़े फाटक के दाहिने हाथ पर जाना और जब तुम उन सभी को आते हुए देखो वहाँ पर खड़े हो जाना और जितनी जोर से तुम चिल्ला सकती हो चिल्लाना आरंभ कर देना, बिल बिल बिल, मैं तुमसे वहाँ पर मिलूंगा। मैंने उसको चूम के अलविदा कहा, मैं आज युद्ध के मैदान में हूँ। उस बात को हुए लगभग 20 वर्ष हो गए हैं। मैंने अपनी पत्नी के साथ में तारीख तय की है, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ और मैंने छोटी बच्ची को लिया जब उसकी मृत्यु हुई और मैंने उसे उसकी माँ के बाहों में रख दिया और हम उसे कब्रिस्तान तक लेकर गए और मैं भाई स्मिथ को सुनने के लिए वहीं खड़ा रहा जो मेथोडिस्ट प्रचारक थे जिन्होंने अंतिम संस्कार का प्रचार किया था। राख से राख और मिट्टी से मिट्टी और मैंने सोचा हृदय से हृदय, वहाँ वो चली गई। उसके कुछ दिन के बाद मैं एक सुबह वहाँ पर बिल्ली को ले गया, वह बस एक छोटा सा बच्चा था, वह था। यही कारण है कि वह मेरे साथ चिपका रहता है और मैं उसके साथ में चिपका रहता हूँ। मुझे उसके लिए पिता और माँ दोनों बनना पड़ता था। मैं उसकी छोटी सी बोतल को लेता, हम रात में उसका दूध गर्म रखने के लिए आग जलाने का खर्चा नहीं उठा सकते थे और मैं उसको अपनी बगल में इस प्रकार से रखता था ताकि मेरे शरीर की गर्मी से वह गर्म रहे। हम दोस्तों की तरह एक साथ चिपके रहे हैं और इन दिनों में से एक दिन जब मैं कार्य क्षेत्र से बाहर चला जाऊंगा और मैं उसके हाथ में वचन को देना चाहूंगा और कहूंगा बिली आगे बढ़ो, तुम उसके साथ में बने रहना। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं उसको हर समय अपने साथ क्यों रखता हूँ, मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ। यहाँ तक कि उसका विवाह हो गया है लेकिन मुझे अभी भी याद है कि उसने मुझसे कहा था उसके साथ में बने रहना और हम एक दूसरे के साथ दोस्तों के समान जुड़े रहे हैं। मुझे शहर में यहाँ वहाँ घूमना याद है, मेरी बगल में बोतल होती वह रोना आरंभ कर देता था। एक रात वह, हम बाहर पीछे के आंगन में चल रहे थे जहाँ पर बस जब वह उसे लेने जा रही होती थी वह उसे बहुत प्यार करती थी और बस में वो बस एक लड़की ही थी आप जानते हैं। और मैं उस पुराने बतुल के पेड़ के आगे और पीछे चल रहा था जो पीछे के आंगन में था और वह अपनी माँ के लिए रो रहा था और मेरे पास कोई माँ नहीं थी कि उसके पास ले जाऊं और मैंने उसे उठाया। मैंने कहा ओह प्रिय, मैंने कहा, उसने कहा डैडी मेरी माँ कहाँ पर है, क्या आपने उन्हें उस जमीन के अंदर डाल दिया है। मैंने कहा नहीं प्रिय, वो ठीक है, वह ऊपर स्वर्ग में है। और उसने वहाँ पर कुछ तो कहा, एक दोपहर को ऐसा लगा कि उस बात ने मुझे मार डाला, वो रो रहा था, देर शाम के समय तक मेरे साथ था और मैं उसे इस प्रकार से अपने कंधे पर लिए हुए था, उसे मेरे कंधे पर उठाया हुआ था और इस तरह से थपथपा रहा था। और उसने कहा डैडी कृपया आप जाकर और माँ को यहाँ पर लेकर आए। और मैंने कहा प्रिय मैं माँ को नहीं ला सकता हूँ। यीशु कहा अच्छा, यीशु से कहो कि वो मेरी माँ को मेरे पास भेज दे, मुझे वो चाहिए। और मैंने कहा अच्छा प्रिय, मैं और तुम उसे किसी समय मिलने जा रहे हैं। और वो रुक गया, कहा डैडी, और मैंने कहा हाँ, कहा मैंने माँ को उस बादल के ऊपर देखा है। मेरे प्रभु ऐसा लगा कि इस बात ने मुझे मार डाला, मैंने सोचा ओह मैंने माँ को उस बादल के ऊपर देखा है। मैं बस लगभग बेहोश सा हो गया। मैंने उस छोटे बच्चे को अपने सीने से इस प्रकार से लगा लिया और अपने सिर को नीचे झुका लिया और अंदर चला गया। दिन बीतते गए, मैं उस बात को भुला नहीं पाया। मैंने काम करने का प्रयास किया, मैं घर वापस न जा पाता था। अब ये और अधिक एक घर नहीं रह गया था और मैं यहीं रहना चाहता था। हमारे पास उस पुराने टूटे हुए फर्नीचर के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन ये कुछ तो ऐसी चीजें थी जिसका हमने एक साथ आनंद लिया था। ये घर था। और मुझे याद है कि एक दिन मैं लोक सेवा के काम को करने की कोशिश कर रहा था। मैं कम वोल्टेज से आते हुए एक पुराने तार को ठीक करने के लिए ऊपर गया था जो नीचे लटक रहा था। ये बहुत ही सुबह का समय था और मैं खंबे पर चढ़ गया और मैं उस बच्ची को नहीं छोड़ पा रहा था। मैं अपनी पत्नी को जाते हुए देख रहा था, लेकिन उस बच्ची का चला जाना, वह बस एक छोटी सी बच्ची थी और मैं वहाँ ऊपर था और मैं गा रहा था। दूर पहाड़ी पर एक पुराना मजबूत क्रूज खड़ा था और ट्रांसफार्मर से तार निकलकर नीचे की ओर जा रहे थे और उसके अंदर जा रहे थे। आप जानते होंगे कम वोल्टेज वाले, और मैं उनके ऊपर वहाँ लटक रहा था और मैंने देखा और सूरज मेरे पीछे की ओर से ऊपर आ रहा था और वहाँ पर मेरे हाथ फैले हुए थे और उस पहाड़ी के ऊपर क्रूज का चिन्ह था। मैंने सोचा हाँ ये मेरे पाप थे जिसने उसे वहाँ पर रख दिया था। मैंने कहा शारोन प्रिय, डैडी तुमसे मिलने के लिए बहुत ही इच्छुक हैं। प्रिय किस तरह मैं तुम्हें फिर से अपने बाहों में लेना चाहता हूँ। तुम जो छोटी सी प्यारी चीज हो, मैं अपने आपे में नहीं रहा। कई सप्ताह हो गए थे, मैंने अपने रबड़ के दास्ताने उतार दिए। वहाँ मेरे पास से 2300 वोल्ट का करंट प्रवाहित हो रहा था। मैंने अपने रबड़ के दास्ताने उतार दिए। मैंने कहा परमेश्वर मुझे ऐसा करने में बहुत बुरा लग रहा है, मैं एक डरपोक हूँ। लेकिन शेरी डैडी तुम्हें और माँ को बस कुछ ही मिनटों में मिलने जा रहे हैं। दास्तानों को उतारने लगा ताकि मैं अपने हाथों को 2300 वोल्ट के तार पर रख सकूँ। वह टूट क्यों? आपके अंदर यहाँ तक बिल्कुल खून भी नहीं बचेगा। और इसलिए मैंने उस दास्ताने को उतारना आरंभ किया और कुछ तो घटित हुआ। जब मैं अपने आपे में आया, मैं जमीन पर अपने चेहरे पर अपने हाथों को इस तरह से ऊपर करके बैठा हुआ रो रहा था। यह परमेश्वर का अनुग्रह था, नहीं तो मैं यहाँ पर चंगाई की सभा को नहीं कर रहा होता। मुझे यह पूरा यकीन है यह तो वो था जो उसके दान की सुरक्षा कर रहा था, ना ही मेरी। मैंने घर की तरफ जाना आरंभ किया। मैंने काम छोड़कर अपने औजारों को एक तरफ रख दिया और वापस चला गया। मैंने कहा मैं घर जा रहा हूँ। मैं घर के पास जाने लगा और घर में से डाक को उठाया। एक प्रकार से ठंड थी और मैं अंदर चला गया। हमारा एक छोटा सा कमरा था, मैं वहाँ पर एक छोटी सी चारपाई पर सो रहा था और ऊपर से हल्की बर्फ अंदर आ रही थी और वहाँ पर पुराना स्टोव था। मैंने डाक को लिया और डाक में देखा और पहली चीज जो उसमें थी वह उसकी छोटी सी क्रिसमस की बचत थी जो 80 सेंट थे। कुमारी शारोन रोज ब्रैनम यहाँ यह था, वो बात फिर से वहाँ थी। मैं शिकार के संरक्षण के काम को करता था। मैं वहाँ पर अंदर गया और अपनी बंदूक ली, पिस्तौल बंदूक की खोल में से निकाला। मैंने कहा प्रभु मैं इसे और अधिक सहन नहीं कर सकता हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं बहुत ही पीड़ा में हूँ। मैंने बंदूक का घोड़ा पीछे की ओर खींचा, अपने सिर पर रखा। उस अंधेरे कमरे में उस चारपाई पर मैंने घुटने टेके हुए थे। मैंने कहा हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। और जैसे ही मैंने कोशिश की और उस बंदूक के घोड़े को इतनी जोर से दबाया जितनी जोर से मैं दबा सकता था, मैंने कहा धरती पर जैसे कि स्वर्ग में होती है, हमारी आज की रोटी आज हमें दे। और बंदूक नहीं चली और मैंने सोचा हे परमेश्वर क्या आप मुझे टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं? मैंने क्या किया है? आप मुझे मरने भी नहीं दे रहे हैं। और मैंने बंदूक को नीचे फेंक दिया और ये चल गई और कमरे में होकर उसकी गोली निकल गई। मैंने कहा परमेश्वर मैं क्यों नहीं मर सकता और इसमें से बाहर नहीं निकल सकता? मैं बस और अधिक आगे नहीं जा सकता हूँ, आपको मेरे लिए कुछ तो करना होगा। और मैं गिर गया और वहाँ अपने छोटे से गंदे पलंग पर रोने लगा और अवश्य ही मुझे नींद आ गई होगी। मैं यह नहीं जानता कि मैं सो गया था या क्या हुआ। मैंने हमेशा से यह चाहा है कि मैं पश्चिम को जाऊं। मैं हमेशा से उन टोपियों में से एक को चाहा है। मेरे पिता अपनी युवावस्था में घुड़सवारी किया करते थे और मैंने हमेशा से उन टोपियों में से एक को चाहा है। और भाई डेमोस शेकरिन कल मेरे लिए एक टोपी खरीद कर लाए थे, पहली ऐसी टोपी जो मैंने कभी भी पहनी, जो एक प्रकार से पश्चिमी टोपियों की तरह थी। और मैंने सोचा कि मैं एक घास के मैदान में से होकर जा रहा हूँ, गीत गाते हुए। गाड़ी का एक पहिया टूटा हुआ है, पशु पालन के स्थान पर लिखा हुआ था बिकाऊ है। और जब मैं आगे चलता गया, मैंने एक पुरानी ढकी हुई गाड़ी को देखा, जैसे पुरानी गाड़ी जिससे घास के मैदान को पार किया जाता था, और उसका पहिया टूटा हुआ था। निश्चय ही वो मेरे टूटे हुए परिवार को चित्रित कर रही थी। और जैसे ही मैं नजदीक गया, मैंने देखा और वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर युवा लड़की खड़ी थी। वह लगभग 20 वर्ष की थी, सफेद लहराते बाल और उसकी नीली आंखें थी, सफेद वस्त्र पहने हुई थी। मैंने उसकी ओर देखा, मैंने कहा, तुम कैसी हो, आगे चला गया। उसने कहा, हेलो पापा। और मैं पीछे मुड़ा, मैंने कहा, पापा क्यों? मैंने कहा, कैसे कुमारी, तुम कैसे, मैं तुम्हारा डैडी कैसे हो सकता हूँ, जबकि तुम्हारी उतनी ही उम्र है जितनी मेरी है। उसने कहा, डैडी आप बस यह नहीं जानते कि आप कहाँ पर हैं। और मैंने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा, यह स्वर्ग है। कहा, धरती पर मैं आपकी छोटी शारोन थी। क्यों? मैंने कहा, प्रिय तुम तो बस एक छोटी सी बच्ची थी। कहा, डैडी छोटे बच्चे यहाँ पर छोटे बच्चे नहीं रहते हैं, वे अविनाशी होते हैं, वे कभी बूढ़े नहीं होते हैं या ना ही बड़े होते हैं। और मैंने कहा, अच्छा शारोन प्रिय, तुम एक सुंदर युवा स्त्री हो। उसने कहा, माँ आपका इंतजार कर रही है। और मैंने कहा, कहाँ पर? उसने कहा, ऊपर आपके नए घर पर। और मैंने कहा, नया घर? ब्रैनम लोग इधर उधर भटकने वाले हुआ करते हैं, उनके पास घर नहीं होते हैं, वे बस। और मैंने कहा, खैर मेरे पास कभी भी घर नहीं था प्रिय। उसने कहा, डैडी लेकिन आपके पास यहाँ ऊपर एक घर है। मेरा तात्पर्य एक बच्चा होना नहीं है, लेकिन यह मेरे लिए बस बहुत ही वास्तविक है। जब मैं उसके विषय में सोचना आरंभ करता हूँ, ये सब कुछ फिर से वापस आने लगता है। कहा, डैडी आपके पास यहाँ पर एक घर है। मैं जानता हूँ कि मेरे पास वहाँ पर एक घर है, किसी दिन मैं उसमें जाऊँगा। उसने कहा, मेरा भाई बिली पॉल कहाँ पर है? और मैंने कहा, अच्छा मैंने बस कुछ ही मिनट पहले उसे श्रीमती ब्रॉय के यहाँ छोड़ा है। कहा, माँ आपसे मिलना चाहती है। और मैंने मुड़कर और देखा, और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े महल थे, और परमेश्वर की महिमा उनके चारों ओर आ रही थी। और मैंने दूतों की गायन मंडली को गाते हुए सुना, मेरा घर सुंदर घर। मैंने लंबी सीढ़ियों पर चढ़ना आरंभ किया, जितनी जोर से मैं दौड़ सकता था मैं दौड़ा। और जब मैं द्वार पर पहुँचा, वो वहाँ पर खड़ी थी। उसने सफेद वस्त्र पहना हुआ था, लंबे काले बाल उसकी पीठ पर नीचे तक लटक रहे थे। उसने अपने हाथों को फैलाया, जैसा कि वह हमेशा किया करती थी जब मैं काम से या कहीं से थका हुआ घर आता था। मैंने उसे उसके हाथों को पकड़ा और मैंने कहा, प्रिय मैंने शारोन को वहाँ नीचे देखा है। मैंने कहा, वह एक सुंदर लड़की हो गई है, क्या वो नहीं है? उसने कहा, हाँ बिल। उसने कहा, बिल अपने हाथों को मेरे चारों ओर डाल दिया और उसने कहा, बस मेरे कंधों पर। वो मुझे थपथपाने लगी। उसने कहा, मेरे और शारोन के विषय में चिंता करना छोड़ दो। मैंने कहा, प्रिय मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसने कहा, अब शारोन और मैं आपसे बेहतर स्थिति में हैं। और कहा, हमारे विषय में और अधिक चिंता न करो, क्या आप मुझसे प्रतिज्ञा करोगे? और मैंने कहा, होप। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे और शारोन के बिना अकेलापन महसूस होता है, और बिल्ली हर समय तुम्हारे लिए रोता रहता है। मैंने कहा, मैं यह नहीं जानता कि उसके साथ क्या करना है। और उसने कहा, बिल सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कहा, बस मुझसे प्रतिज्ञा करो कि आप और चिंता नहीं करोगे। और उसने कहा, क्या आप बैठोगे नहीं? और मैंने यहाँ वहाँ देखा, और वहाँ पर एक बहुत बड़ी कुर्सी थी। और मुझे याद है कि मैंने एक कुर्सी को खरीदने की कोशिश की थी। अब बंद करते हुए एक बार मैंने एक कुर्सी को खरीदने की कोशिश की, हमारे पास नाश्ता करने के लिए। बस वे पुरानी साधारण सी लकड़ी की कुर्सियां थी, हमें उन्हीं का उपयोग करना पड़ता था। हमारे पास केवल वही कुर्सियां थी, और हम उनमें से एक कुर्सी को खरीद सकते थे जिसमें आप पीछे पीठ टिका सकते हैं। जैसे कि मैं भूल गया कि आरामदेह कुर्सी किस प्रकार की होती है, और उसका मूल्य $17 था। और आप पहले $3 देकर और बाद में प्रति सप्ताह $1 को दे सकते हैं। और हमने एक खरीद ली थी। और ओह, जब मैं अंदर आता, मैं सारा दिन काम करता था और आधी रात तक सड़कों पर यहाँ वहाँ प्रचार करता और जहाँ कहीं भी मैं प्रचार कर सकता था। और एक दिन मैं उस कुर्सी का भुगतान करने में पीछे छूट गया। हम उसे नहीं दे पाए और दिन पर दिन बीतते चले गए और अंत में वे आकर और मेरी कुर्सी को उठाकर और इसे ले गए। वो रात मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसने मेरे लिए चेरी पाई या पकवान बनाया था। वह बेचारी छोटी सी स्त्री, वह जानती थी कि मैं निराश हो जाऊंगा। और खाने के बाद मैंने कहा, प्रिय आज रात तुम किस बात के लिए इतनी अच्छी बनी हुई हो? और उसने कहा, सुनो, मैंने पड़ोस के लड़कों को आपके लिए मछली के चारे के कीड़े खोद कर निकालने को बोला था। क्या आप नहीं सोचते कि हमें नदी की ओर जाकर और कुछ देर तक मछली पकड़नी चाहिए? और मैंने कहा, हाँ, लेकिन। और वो रोने लगी। मैं जान गया था कि कुछ तो गलत था। मुझे कुछ अंदाजा था, क्योंकि उन्होंने पहले से मुझे एक नोटिस भेज दिया था कि वे उस कुर्सी को लेने के लिए आ रहे हैं, और हम एक सप्ताह में $1 को नहीं दे पाए थे। हम इसे नहीं खरीद पाए थे। उसने अपने हाथों को मेरे चारों ओर डाला और मैं दरवाजे पर गया और मेरी कुर्सी चली गई थी। उसने मुझे वहाँ ऊपर बताया। उसने कहा, आपको वह कुर्सी याद है बिल? और मैंने कहा, हाँ प्रिय, मुझे याद है। कहा, उसी के विषय में आप सोच रहे हैं, क्या ऐसा नहीं है? हाँ। कहा, खैर, वे इस कुर्सी को नहीं ले जा सकते हैं, इसका दाम चुकाया गया है। उसने कहा, बस एक मिनट के लिए बैठो, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। और मैंने कहा, प्रिय, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। और उसने कहा, मुझसे वादा करो बिली, मुझसे प्रतिज्ञा करो कि आप और अधिक चिंता नहीं करोगे। आप अब वापस जा रहे हो? और कहा, मुझसे प्रतिज्ञा करो कि आप चिंता नहीं करोगे। और मैंने कहा, होप, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और बस तभी मैं आपे में आ गया। कमरे के अंदर अंधेरा था। मैंने चारों ओर देखा और मैंने उसके हाथ को अपने चारों ओर महसूस किया। मैंने कहा, हो, क्या तुम यहाँ कमरे के अंदर हो? वह मुझे थपथपाने लगी। उसने कहा, बिल, क्या आप मुझसे यह प्रतिज्ञा करोगे? मुझसे प्रतिज्ञा करो कि आप विवाह, आप अब और चिंता नहीं करोगे? मैंने कहा, मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ। और फिर उसने मुझे दो या तीन बार थपथपाया और वह चली गई। मैं उछल कर उठा और लाइट को जलाया, हर जगह देखा, वो चली गई थी। लेकिन वह बस कमरे से बाहर गई थी। वो गई नहीं है, वो अभी भी जीवित है। वो एक मसीही थी। बिली और मैं कुछ समय पहले यहाँ उसकी कब्र पर गए थे। वह अपनी माँ और बहन के लिए एक छोटा सा फूल लेकर गया था, बस एक ईस्टर की सुबह को। और हम रुक गए। उस छोटे से बच्चे ने रोना आरंभ किया। उसने कहा, डैडी, मेरी माँ वहाँ नीचे है। मैंने कहा, नहीं प्रिय, नहीं, वो वहाँ नीचे नहीं है। बहन वहाँ नीचे नहीं है। हमारे पास यहाँ पर एक बंद कब्र है, लेकिन दूर समुन्द्र के पार वहाँ एक खुली हुई कब्र है जहाँ पर यीशु जी उठा था। और किसी दिन वो आएगा, वो बहन और माँ को अपने साथ लेकर आएगा। मित्रों, मैं आज सुबह युद्ध के मैदान में हूँ। मैं बस और अधिक नहीं बता सकता हूँ। मैं परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम अपने सिरों को कुछ समय के लिए झुकाएं। हे प्रभु, बहुत सी बार प्रभु, मुझे पक्का है कि लोग नहीं समझते हैं जब वे सोचते हैं कि ये चीजें आसानी से आ जाती हैं। लेकिन वहाँ एक महान दिन आ रहा है जब यीशु आएगा और ये सारे दुख मिट जाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता कि आप तैयार होने में हमारी सहायता करेंगे। और वो अंतिम प्रतिज्ञा, जब मैंने उसके गालों को उस सुबह चूमा था कि मैं उससे वहाँ उस दिन मुलाकात करूँगा, मैं विश्वास करता हूँ कि वह उस जगह पर खड़ी होकर मेरा नाम जोर से पुकार रही होगी। प्रभु, उस समय से लेकर मैं उस प्रतिज्ञा के प्रति सच्चा बना रहा हूँ। प्रभु, संसार भर में हर प्रकार के स्थानों में सुसमाचार को लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और थक गया हूँ। मैं बहुत अधिक थक गया हूँ। इनमें से एक दिन मैं अंतिम बार बाइबल को बंद करूँगा और परमेश्वर मुझे प्रतिज्ञा के प्रति विश्वास योग्य बनाए रखें। अपने अनुग्रह को मेरे चारों ओर बनाए रखें। प्रभु, मुझे इस जीवन की चीजों की ओर न देखने दें, लेकिन उन चीजों की ओर देखने दें जो कि उस पार है। मुझे ईमानदार बने रहने में सहायता करें। मैं फूलों से सजा आराम का बिस्तर नहीं चाहता हूँ, नहीं प्रभु, जबकि मेरे मसीह की मृत्यु वहाँ पर दुख को झेलते हुए हुई और उन बाकी सभी की मृत्यु इसी प्रकार से हुई। मैं कोई भी आसान चीज नहीं मांग रहा हूँ प्रभु, बस मुझे ईमानदार और सच्चा बनाए रखें, होने पाए कि लोग मुझसे प्रेम करें, ताकि मैं उनकी अगुवाई आपकी ओर कर सकूं। और किसी दिन जब यह सब समाप्त हो जाएगा और हम हरे भरे पेड़ों के इर्द गिर्द उसके नीचे एकत्र होंगे, मैं उसका हाथ पकड़कर और उसके साथ वहाँ पर चलकर जाना चाहूँगा, ताकि मैं उसे एंजेलेस टेम्पल के लोगों को और उन सभी को दिखा सकूं। तब ये एक महान समय होगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी करुणा यहां हम में से हर एक के ऊपर आकर ठहरे, और वे जो यहां पर हैं, प्रभु, हो सकता है वे आपको जानते तक ना हो, और हो सकता है कि समुद्र के उस पार उनका कोई छोटा सा प्रियजन हो। यदि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को कभी भी पूरी नहीं किया है, होने पाए कि वे अभी इसे करे प्रभु, जबकि हमने हमारे सिरों को झुकाया हुआ है। मैं सोचता हूँ कि आज दोपहर इस विशाल सभागार में आप में से कितने यह कहते हैं, भाई ब्रैनम, मैं भी अपने प्रियजनों से मिलना चाहता हूँ। मेरे कुछ प्रियजन हैं जो कि बस नदी के उस पार हैं। हो सकता है कि आपने एक प्रतिज्ञा को किया हो कि आप उनसे मुलाकात करेंगे। हो सकता है जब आपने अपनी माँ को वहाँ कब्र पर उस दिन अलविदा कहा हो। हो सकता है आपने अपनी छोटी बहन को अलविदा कहा हो, या पिता को कहा हो, या उनमें से किसी को कब्र पर कहा हो, प्रतिज्ञा की हो कि आप उनसे मिलेंगे, और आपने अभी तक कभी भी तैयारी नहीं की है। क्या आप नहीं सोचते हैं कि इस बात को करने के लिए ये अभी अच्छा समय है? मेरे रोने के लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन ओह प्रभु, मित्रों, आपको एहसास नहीं होता है, आपको नहीं पता है कि कैसा बलिदान, एक जीवन कथा का शायद से ये एक स्थान नहीं है। आप में से कितने अभी खड़े होकर और यहाँ प्रार्थना के लिए आना चाहेंगे, कहेंगे मैं अपने प्रियजनों से मिलना चाहता हूँ, श्रोता गण में से उठकर और यहाँ आ जाएं। क्या आप ऐसा करेंगे? यदि किसी ने अभी तक उस तैयारी को कभी नहीं किया है, श्रीमान, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं एक बुजुर्ग अश्वेत व्यक्ति को बाहर आते हुए देख रहा हूँ, दूसरे लोग भी आ रहे हैं। अपने आप को आगे बढ़ाएं। आप जो ऊपर बालकनी में हैं, बस दाहिनी ओर सीधे उस गलियारे की ओर बढ़ें, या खड़े हो जाएं। आप जो चाहते हैं कि आपको ठीक अभी प्रार्थना के शब्द में याद किया जाए, बस इतना ही, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। यह अच्छी बात है, हर कहीं खड़े हो जाएं। आप जो यह कहना चाहते हैं, मेरे पिता उस पार वहाँ पर हैं, मेरी माता या एक प्रियजन वहाँ उस पार है, मैं उन्हें जाकर देखना चाहता हूँ, मैं उनसे शांति में मिलना चाहता हूँ, क्या आप खड़े होंगे? बस अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, श्रोतागण में हर कहीं अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, कहें मैं स्वीकार करना चाहता हूँ। महिला, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको वहाँ पीछे की ओर आशीष दे, और आपको वहाँ ऊपर आशीष दे, प्रभु आपको यहाँ आशीष दे। श्रीमान, यह सही है, वहाँ ऊपर बालकनी में प्रभु आपको आशीष दे, चारों ओर सभी जगह प्रार्थना के शब्द के लिए अभी अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। तब पवित्र आत्मा यहाँ पर है और हमारे हृदय पर मंडरा रहा है, ताकि टूट जाए। आप जानते हैं कलीसिया को किस चीज की आवश्यकता है? वो है एक टूटने की। हमें वहाँ कुमार के घर जाने की आवश्यकता है। हमारी सख्त अपनी खुद की बनाई हुई धर्म शिक्षा कभी कभी इतनी अच्छी तरह से काम नहीं करती है। हमें जिस चीज की आवश्यकता है वो है एक पुराने चलन के टूटने की, हमारे हृदय में पश्चाताप की, परमेश्वर के प्रति नम्र बनने की। क्या यही सारे लोग हैं जो खड़े होने के लिए तैयार हैं? तब आइए हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। हे प्रभु, जो यीशु को फिर से मरे हुओं में से लेकर आया कि हम सभी को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा सके, भरोसा करने के द्वारा, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि ये लोग जो आपको स्वीकार करने के लिए अभी पैरों पर खड़े हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें क्षमा प्रदान की जाएगी। और हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे आपको अपना उद्धारकर्ता और राजा और प्रेम करने वाले के रूप में ग्रहण करेंगे, और हो सकता है उनकी माँ या उनके पिता या कोई तो होगा जो बस उस समुन्दर के पार है। वहाँ एक बात तो निश्चित है कि उनके पास एक उद्धारकर्ता है। होने पाए कि उनके पाप क्षमा किए जाएं और उनके सारे पाप मिटा दिए जाएं। जिससे कि उनके प्राण मेमने के लहू में धोए जा सकें और आज के बाद से वे शांति में जीवन जिए और किसी महिमा में दिन जब यह सब कुछ समाप्त हो जाता है होने पाए कि हम आपके घर पर एकत्र हों और वहाँ पर न टूटने वाले परिवारों के रूप में हों कि हम हमारे प्रियजनों से मुलाकात करें जो उस ओर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसे हम उन्हें आपको सौंपते हैं कि आप उसे सिद्ध शांति में रखेंगे जिनका हृदय उस पर स्थिर रहता है। प्रभु से प्रदान करें जब हम उन्हें आपको सौंपते हैं आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। मुझे यकीन है कि प्रबंधक जानते होंगे कि आप कहां पर खड़े हुए हैं और कुछ ही मिनटों में वे ठीक आपके साथ होंगे। और अब उनके लिए जो प्रार्थना के कार्ड को लेना चाहते हैं, बिली, जीन और लियो कहां पर हैं? वे पीछे हैं, वे यहां पर बस कुछ मिनटों में प्रार्थना कार्ड को देने के लिए होंगे। भाई सभा को प्रार्थना में समाप्त करेंगे और प्रार्थना के कार्डों को दिया जाएगा। हम यहां पर बस थोड़े ही समय में बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए वापस आएंगे, तो ठीक है भाई।